अमृत वचन राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक अमृत वचन की ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉपीराइट 2021 राधा स्वामी सत्संग ब्यास। अमृत वचन बाबा जयमल सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी, महाराज जगत सिंह जी और महाराज चरण सिंह जी के चुने हुए वचनों का संग्रह। प्रकाशक राधा स्वामी सत्संग ब्यास। कॉपीराइट 1993 और 2013 राधा स्वामी सत्संग ब्यास। सर्वाधिकार सुरक्षित। पहला संस्करण 1993। विषय सूची प्रकाशक की ओर से। वचन एक, बाबा जयमल सिंह जी महाराज। दो, हुजूर महाराज सावन सिंह जी। तीन, सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी। चार, हुजूर महाराज चरण सिंह जी। प्रकाशक की ओर से बाबा जयमल सिंह जी महाराज और हुजूर महाराज सावन सिंह जी के अमूल्य वचन अमृत वचन नाम से अलग अलग छपते रहे हैं। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के चुने हुए वचन रूहानी गुलदस्ता नाम से प्रकाशित होते रहे हैं। कुछ समय पूर्व संगत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन तीनों पुस्तिकाओं को एक ही पुस्तक में इकट्ठा कर दिया गया है। पाठकों की काफी समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए अब हुजूर महाराज चरण सिंह जी के अनमोल वचनों को भी इस पुस्तिका में शामिल कर दिया गया है। आशा है आध्यात्म प्रेमी श्रोता इन वचनों से लाभ उठाएंगे। सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। वचन बाबा जयमल सिंह जी महाराज। एक, देह स्वप्न मात्र है। जब देह झूठी है तो सब सामान दुनिया का झूठा है। नाम धुन सच्ची है सो उसे पकड़ो। दो, अगर रोज रोज शब्द से सच्ची प्रीति करोगे तो मन के सब विकार छूट जाएंगे और दुनिया की चाहतें जो जन्म मरण का मूल हैं मन से निकल जाएंगी। मन सद्गुरु से प्रीति करेगा। तीन, हर वक्त सद्गुरु के वचन के अंदर रहना चाहिए। चार, नाम के प्रताप से जमीन आसमान और कुल चीजें पैदा हुई। सब कुछ नाम के बाद ही पैदा हुआ है। पहले नाम है। जिस जगह नाम होगा सब कुछ होगा। इसलिए पहले नाम को पकड़ना चाहिए। जब नाम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। नाम को किसी भी वक्त नहीं भूलना चाहिए। पांच, भजन की तरफ ख्याल जरूर रखो। चित्त की प्रीति हर वक्त शब्द में रखनी चाहिए। क्योंकि सब काम दुनिया का झूठा है इसलिए झूठा जानकर किए जाओ। दिल से प्रीति भजन से ही रखनी है। छह, देह तो दुख सुख का घर है। इसमें तो दोनों ही जरूर आएंगे। इसलिए इसे अच्छा मानकर भुगत लें। जो कई वर्षों का दुख होता है वो सत्संगी को थोड़े दिनों में भुगताया जाता है। किसी बात की चिंता ना करना। सात, दुख की घड़ी गनीमत जानो। क्योंकि सब दुख सुख खुद मालिक के हुक्म से आता है। फिर जब हुक्म से आता है तो बुरा क्यों मानना चाहिए। मालिक हमारे पास है, हमें देखता है। अगर हमारा फायदा दुख में होता है तो दुख भेजता है। अगर हमारा फायदा सुख में होता है तो सुख भेजता है। दोनों ही हुक्म के अंदर हैं। आठ, मन में अगर सतगुरु के दर्शन की चाह लगे तो इसके बराबर और कोई करनी नहीं है। नौ, लेना देना अदा करने के लिए पूरे सद्गुरु प्रेमी को अपने देह स्वरूप से जुदा करते हैं पर शब्द धुन से जुदा नहीं करते। दस, ये जो नौकरी या घर में कामकाज करते हो ये भी सद्गुरु का काम है। भजन और सिमरन करना भी सद्गुरु का काम है। जो कुल कारोबार है, तन मन और धन जो कुछ है सब सद्गुरु का है। मैं कुछ नहीं हूं। इसको ये समझना चाहिए कि मैं सिर्फ कारिंदा हूं। अपना आपा भाव बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। 11, दुख सुख अपने कर्मों का दंड है। जो पिछले कर्म प्रारब्ध बनकर आए हैं वे जरूर अपना फल देंगे। इसलिए दुख सुख में घबराना नहीं चाहिए, हर वक्त शब्द धुन में प्रीति रखनी चाहिए, बल्कि ऐसी प्रतीति होनी चाहिए कि दुख सुख को अच्छा समझना चाहिए। शब्द धुन में प्रीति के साथ ऐसा ध्यान लगाना चाहिए कि दुख सुख की खबर भी ना रहे कि दुख सुख कहाँ है। 12. गुरुमुख जो कुछ करता है वो सब भजन ही है। 13. अगर अंतर से सच्ची प्रीति सद्गुरु से हो, दर्शन की चाह सच्ची हो, तो ये जान लो कि 100-100 वर्ष भजन करने से भी मन ऐसा शुद्ध नहीं होता जैसा कि सद्गुरु के दर्शन की सच्ची चाह के द्वारा शुद्ध होता है। 14. इस युग में मुक्त होने का, मालिक से मिलने का, जल्दी निर्मल होने का यत्न सिवाय सद्गुरु की सच्ची प्रीति, उन पर भरोसा और उनको मनुष्य न समझना है। 15. भजन के पीछे सब चीजें हैं जी, जहां भजन होगा और चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। 16. सद्गुरु से प्रीति प्रतीति, सच्चे दिल से सद्गुरु की शरण और सद्गुरु के चरणों का प्यार हमेशा दिल में छाया रहे, यानी मन पर लिखा रहे, और ये भी लिखा रहे कि सद्गुरु मनुष्य नहीं हैं, सबके कर्ता हैं, सतनाम सत्पुरुष अलख अगम अनामी सब सद्गुरु ही हैं, कुल मालिक हैं, सद्गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। ऐसी प्रीति वाला सचखंड पहुंचेगा और अलख अगम अनामी में राधा स्वामी धुर हैरत के देश में समाएगा। 17. भजन रोज करें और मन में चलते फिरते काम काज करते हुए सिमरन करते रहें। जब फुर्सत हो उस वक्त तो करना ही है, चलते फिरते भी सिमरन ना छोड़ो, क्योंकि सांस ग्रास गिनती के हैं। 18. दुनिया की आशाओं चाहतों दुख सुख आदि के पिछले जन्मों के जितने बंधन हैं, 21 जन्मों तक के बंधन उस समय कट जाते हैं जब इसको पूरे सद्गुरु के दर्शन होते हैं। 19. जब सद्गुरु अपनी दया मेहर से नाम शब्द धुन बख्शते हैं, तो उसी समय धर्मराय के दरबार में जन्म मरण और 84 के कागज फट जाते हैं। 20. जिस वक्त सद्गुरु पर पूरी पूरी प्रतीति हो गई, उस वक्त के जीव सचखंड का वासी हो गया। 21. भजन सिमरन रोज रोज करना, जब रोज रोज करोगे तो जरूर एक दिन दया मेहर होगी, दरवाजे के आगे पड़े रहो, किसी वक्त बुलाए जाओगे, जल्दी का काम शैतान का होता है। 22. शब्द धुन खुद अनामी पुरुष की जान है, जिस वक्त उसकी इच्छा होगी कि सूरत को मैं अपने में मिला लूं, फौरन मिला लेगा, पर जिस वक्त सूरत शब्द धुन के समान निर्मल होगी, जरा सी भी देरी ना लगेगी। 23. जब से ये स्थूल सृष्टि पैदा हुई है, उस वक्त से ही मन व सूरत मैले हैं, सूरत को कभी 10-20 बरस तक दो पहर या तीन पहर के लिए भी शब्द धुन में एकाग्रता के साथ नहीं लगाया गया है, फिर इतनी जल्दी धुन में किस तरह जगह मिलेगी। जब तक सूरत 8 पहर तक प्रेम के साथ धुन से नहीं लगेगी, तो धुन में किस तरह समाएगी। 24. शब्द स्वरूप गुरु को आपकी सूरत और मन को निर्मल करने की बहुत बहुत जल्दी है, वे ऐसी दया मेहर कर रहे हैं कि एक पल भी नहीं बिसारते, और चाहते हैं कि ये सूरत जिसको शब्द धुन सुनाकर जगा दिया है, कब निर्मल हो और कब इसे मैं अपने स्वरूप शब्द धुन में मिलाकर सचखंड पहुंचा दूं। 25. सतगुरु के वचनों के अंदर रहना चाहिए और कारोबार दुनिया का भी करना चाहिए। जिस वक्त फल पक जाता है तो अपने आप ही वृक्ष से टूट जाता है, ना तो फल को कुछ तकलीफ होती है, ना वृक्ष को तकलीफ होती है। इस देह में आकर सद्गुरु पूरा मिल जाए तो सब काम पूरे हो गए, ये इसका फल है। सद्गुरु के वचनों पर चलना, ये फल का पकना है। जो रोज रोज जितना हो सके भजन और सिमरन करना है, ये इसको पानी देना है, और शब्द धुन के साथ मिल जाना ये इसका पक कर टूट जाना है। 26. फिक्र भजन की ही करो और दुनिया के सारे काम का चलते जाएंगे, कोई रुक तो नहीं जाते, चलते रहते हैं। 27. जिस वक्त से काम से फुर्सत होती है तो ये पिछली बातों को याद करता है, साथ ही पछतावा करता है और फिर कहता है कि अगर ये जानता तो ऐसा करता, इसलिए ये सब झूठ है, क्योंकि जैसा होना था वैसा ही हो गया। पछतावा करने से कुछ नहीं मिलता है। लोगों के सुख दुख की चर्चा या निंदा वस्तुति करने में वक्त गया, ना व्यवहार हुआ और ना परमार्थ हुआ। 28. जब तक भजन करो दुनिया के काम काज की ओर बिल्कुल ख्याल ना करना, फिर मन लग जाएगा। और मन को इस तरह समझाओ कि जिस वक्त तू सो जाता है उस वक्त दुनिया के कारोबार की कोई याद नहीं रहती, तो क्या बिगड़ता है? तो अब भजन या सिमरन करते वक्त संकल्प और विकल्प क्यों करता है? अगर भजन व सिमरन करते वक्त तू दुनिया के कामों को याद ना करेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? इस तरह मन को दृढ़ता के साथ समझाओ। 29. चलते फिरते बैठते सोते बल्कि हर वक्त शब्द धुन कभी ना भूलें। जो कुछ कामकाज दुनिया का है, सब व्यवहार परमार्थ सब शब्द धुन करती है। ये मन कहता है कि मैं करता हूं, ये झूठा है। सब शब्द धुन करती है, सो शब्द धुन में घर करना चाहिए। 30. हर समय याद रखो कि इस दुनिया से जरूर चले जाना है। जो कुछ हम मन के कहे लगकर करेंगे उसका दंड जरूर चुकाएंगे। मन को हर वक्त ये समझाओ कि सद्गुरु के वचनों में रहे, फिर सब करनी हो गई जी। 31. जिस वक्त अंतर में इस जीव को सद्गुरु के स्वरूप का पूरा पूरा दर्शन होगा, तब ये बहुत निर्मल होगा। फिर सद्गुरु इसे देखेंगे कि इसकी दुनिया की सब सूक्ष्म स्थूल आशा मनसा निकल गई हैं, ये केवल सद्गुरु के स्वरूप को मांगता है, किसी तरह की और कोई चाह नहीं है, सद्गुरु की आज्ञा में राजी है, चाहे वो कैसी कठिन आज्ञा दें उस पर खुश हो। मन से ये कहे कि बहुत अच्छा हुआ है, जो सद्गुरु की आज्ञा है सो सब भजन ही है। ऐसा जब समझ जाएगा तब सद्गुरु इसे एकदम सचखंड ले जाएंगे। 32. ये नहीं सोचना कि ये चीज मुझे मिले या अमुक मेरे से छोटा था अब बड़ा हो गया है, पर देखो मुझे नहीं मिला या परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिया है। ऐसी ऐसी मन की कल्पनाएं और खोटी वासनाएं कभी भी मन में नहीं लाना। 33. ये सोचना चाहिए कि मुझे तो सद्गुरु के चरण कमलों की प्रीति और प्रतीति चाहिए, उनके वचनों के अंदर रहना चाहिए। और ये समझो कि माया की अग्नि तो सबको लगी हुई है और सब जीव उसमें दिन रात झुलस रहे हैं, सो मैं ये क्यों मांगता हूं। 34. जो सद्गुरु की मत यानी आदेश लेकर काम करना है वो सद्गुरु का काम और परमार्थी काम है, चाहे थोड़ा ही है पर बहुत हो जाएगा जी। एक दृष्टांत है उसे समझना। अगर खेत जोत कर वक्त पर खेती का बीज बोया जाए तो एक दाने की कई मुट्ठियां हो जाती हैं। किसी किसी गेहूं के पौधे में 60 या 70 गुच्छे पड़ जाते हैं, पर शुरू में दाना एक ही होता है। किसी किसी एक दाने के शेर भर हो जाते हैं। उस बीज के दाने के साथ के किसी दाने को अगर बंजर जमीन में बोया जाए तो एक दाने का एक भी नहीं रहता है। इसलिए मन जो काम करता है, जितने संकल्प व दलीलें जगत के काम, भोग और खोटे काम, खोटी वासनाएं जिनसे कुछ नहीं बनता है, सब बंजर में बीज बोना है। 35. आपा भाव को छोड़ दो, तन मन धन सब गुरु को दे दो, फिर आप कोई दावा ना करो, फिर मन कभी नहीं भटकेगा। क्योंकि जो चीज किसी को दे दी है फिर उस पर कोई दावा नहीं होता। 36. किसी सांसारिक काम में प्रीति के साथ मन नहीं लगाना। जैसे मेहमान सब काम शौक से करता है पर मन में समझता है कि ये मेरा घर नहीं है, इसलिए कुल दुनिया और इसके सब काम व असबाब झूठे हैं और झूठे जानकर किए जाना है। मन व सूरत को सद्गुरु के चरणों में लगाए रखना है। 37. अगर 14 लोग का राज मिले तो खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो झूठा है, जाने वाला है। झूठी चीज से प्रीति करोगे, धोखा खाओगे, और फिर अगर वो राज वापस छीन लिया जाए तो नाराज नहीं होना, क्योंकि जिसने दिया उसी ने ले लिया, उसी का था और झूठा था। 38. कोई किसी कदर आदर करे या निंदा करे, आदर व स्तुति में खुश नहीं होना और निंदा में नाराज नहीं होना, सदा राजी रहना और मालिक की रजा में खुश रहना, जहां भी रखें।
39.
यह चिंता करनी चाहिए कि मेरा कितना समय बातें करने में गया है, यह समय फिर से कभी मिलने वाला नहीं है। सोचो, अपनी मौत को याद रखो। 40. हमें यहां हमेशा नहीं रहना है, हमारे दिन, घड़ी, पहर, पल, सांस सब गिनती के हैं। मन को दुनिया की वासना में से निकालो, सुरत को शब्द में रखो। 41. भजन करने का फिक्र करना चाहिए और वक्त बेफायदा ना जाए ये फिक्र करना चाहिए। जो वक्त बेफायदा गुजर गया उसका पछतावा करो कि इतने सांस क्यों फिजूल गए, न दुनिया के काम में लगे न परमार्थ में। 42. जिस वक्त भजन में बैठो और शब्द धुन को सुनो, दुनिया की सब चिंता छोड़ दो, इससे बड़ा और कुछ नहीं। रोज रोज इसे बढ़ाओ, कम नहीं करना। 43. दुनिया के जो काम हैं वे पिछले कर्मों के अनुसार होते हैं, जैसे आए वैसे भुगत गए, उनकी कोई चिंता नहीं। कभी अच्छे हो गए और कभी बुरे हो गए, उनकी चिंता कुछ नहीं, चिंता तो भजन की है। 44. हर वक्त यही ताकीद है कि किसी वक्त घबराओ नहीं कि उस जगह हम सुखी थे और इस जगह दुखी हैं, मौज समझनी चाहिए। 45. बीमारी में घबराना मुनासिब नहीं, अगर आदमी बीमारी में घबराता है तो बीमारी बढ़ जाती है। 46. चाहे सारी दुनिया का राजा हो, तब भी मनुष्य को अपने हक की, अपने हाथों की कमाई करके खानी चाहिए, इसलिए अपनी नौकरी हक की कमाई करो। आप भी खाओ, औरों को भी दो, घर वालों को भी दो, और यथाशक्ति साध संगत को भी दो। 47. दुख की घड़ी सबसे बेहतर है, जिसमें मालिक याद आता है। दया मेहर से दुख आता है, यूं ही नहीं आता, इसलिए दुख में घबराना नहीं चाहिए। 48. तमाम दुनिया का काम करना, पर प्रीति प्रतीति सद्गुरु के चरणों में रखना, क्योंकि सांस ग्रास गिने हुए हैं। दुनिया का काम पेट के लिए है, भजन इस दुनिया से पार हो जाने के लिए है, ये दो काम करने हैं। बाकी के लिए मन को जवाब दे दो कि तेरा कहना नहीं मानना है। मन में सद्गुरु के वचनों को हमेशा सामने रखो। 49. मौत को हर वक्त याद रखना है और सद्गुरु के वचनों को याद रखना है जी। हमारा घर अलख खगम के पार है, शब्द धुन की आवाज को पकड़कर वहां जाना है। वही हमारा प्रकाश है, हमारी रोशनी है। धुन खुद निर्मल करके राधा स्वामी जी के देश में पहुंचा देगी, पक्का भरोसा करो। 50. आपने जो मन का हाल लिखा है सो जरूर मन ऐसा ही है, पर एक युक्ति मन को रोकने के लिए है। सतगुरु का वचन हर वक्त याद रखो। जिस वक्त मन दलील करे उसी वक्त सिमरन करो। मन की दलील के पीछे न जाओ और सतगुरु के वचनों को याद करो। मौत को सिर के ऊपर खड़ी समझो। ये भी समझो कि गुरु के वचन को भूलकर जो कुछ भी करेंगे उसका दंड भरना होगा। 51. जो कुछ करना कहना है वो सब खुद मालिक राधा स्वामी जी के हुक्म से होगा। बिना उनके कोई कुछ नहीं कर सकता है, पक्का भरोसा रखो। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, न कुछ घटा सकता है, न कुछ बढ़ा सकता है, क्योंकि राधा स्वामी अनामी कुल मालिक ने मनुष्य देह धारण करके स्थूल दुनिया के कुल कारोबार की कार्यवाही मर्यादा से बांधी हुई है। जो अपने प्रारब्ध में है उसे कोई नहीं हटा सकता। 52। भजन व सिमरन ये अपने घर का काम है, ये सदा साथ रहेगा क्योंकि ये सतगुरु की दात है, ये बढ़ेगा घटेगा कभी नहीं। 53। शब्द धुन को प्रेम प्रीति से सुनो, क्योंकि शब्द कुल का कर्ता और हर्ता है। सब शक्तियां करोड़ों करामात शब्द धुन के अंदर हैं, और शब्द धुन खुद दया मेहर करके आठों पहर दिन रात आवाज देती है। जिस वक्त भी सुरत लगाओ उसी वक्त आवाज सुरत को पुकारती है। शब्द धुन को पकड़ो, कोई काम दुनिया का कभी नहीं अटकेगा। क्यों सोच विचारों और मन की कल्पनाओं के पीछे वक्त बर्बाद करते हो। 54। मन में हर वक्त सिमरन करना, ये मन को निर्मल करता है। मैल नहीं लगती और मन निर्मल होकर शब्द धुन को पकड़ता है। 55। आपने लिखा है कि भजन नहीं होता, ये कोई लाचारी नहीं है, गफलत और बेपरवाही है, क्योंकि दोनों वक्त रोटी तथा और अच्छी चीजें खाने के लिए आपका मन करता है और खाता है, और भजन सिमरन जो सब कुछ दे रहा है, जिसकी कमाई के लिए ये मनुष्य देह मिली है, जो कि नर नारायणी देह है जिसमें परमेश्वर मिल सकता है, क्या ऐसा पदार्थ यूं ही चला जाए। वचन हुजूर महाराज सावन सिंह जी। 1। परमात्मा की दया हो तो सत्संग मिलता है, दया हो तो गुरु मिलता है, दया ही हो तो नाम मिलता है, उनकी दया हो तो शिष्य नाम की कमाई करके पर्दा खोल लेता है। 2। मालिक से मिलने का मार्ग एक ही है, वो सबके अंदर है और ईश्वर रचित है। किसी वली अवतार पैगंबर या महात्मा ने उसे नहीं बनाया है। हम न उसे घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं और न ही बदल सकते हैं। 3। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। आत्मा और परमात्मा का विषय इतना बारीक और जटिल है कि मनुष्य की बुद्धि इस विषय को समझने में अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पाती है। गुरु की सहायता के बिना परमात्मा का मिलना असंभव है। 4। हम चोरी ठगी और अन्य बुरे काम करके बाल बच्चों को खिलाते हैं, ये तो सोचते नहीं कि जिनके लिए हम करते हैं वे हमारी क्या मदद करेंगे। कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। औरत मर जाए उसका पति पास बैठा मुंह देखता रह जाता है, या पति मर जाए तो औरत बैठी मुंह देखती रह जाती है। जब ये शरीर साथ नहीं जाता तो और क्या जा सकता है। बेटे बेटियां धन दौलत हमारा ईमान नहीं है। हमारा महबूब हकीकी सच्चा प्रियतम एक सतगुरु है। इसका मतलब ये नहीं कि इन रिश्तेदारों को छोड़ दें, आप इनसे काम लें, लेकिन हमारा सच्चा प्यार किसके साथ होना चाहिए। सिर्फ उस एक परमात्मा या गुरु के साथ। 5। मनुष्य देह केवल इसलिए मिली है ताकि इस देह में बैठकर परमात्मा के दर्शन कर सकें और जीते जी ज्यादा से ज्यादा रूहानी तरक्की करके सचखंड पहुंच सकें। इसका हर एक मिनट करोड़ों रुपए के बराबर है। 6। जब जिंदगी का मकसद निश्चित हो जाता है और उसको प्राप्त करने का साधन भी मालूम हो जाता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति हर अवसर और अवकाश की हर घड़ी से लाभ उठाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है। 7। काया वही सुंदर है जिसमें सुरत अपने पति परिपूर्ण कुल मालिक भाव शब्द या नाम के साथ वास कर रही हो। उस सच्चे पति के साथ मिलाप करने पर इसका सुहाग सदा के लिए कायम हो जाता है। फिर शरीर छूटे या रहे इसकी कोई चिंता नहीं रहती। 8। दुनिया की दौलत प्राप्त करने के लिए तुम लड़ाइयों में जाते हो, वो धन बाल बच्चों की सेवा में खर्च करते हो, वे बाल बच्चे साथ नहीं जाते। अगर इसका 10वां भाग भी गुरु की सेवा में खर्च करो तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। 9। यह संसार संघर्ष का क्षेत्र है, यहां कभी न शांति रही है और न कभी रहेगी ही। आज की समस्याओं में से कल की समस्याएं जन्म लेती हैं। जिस संसार में मन और माया का जोर है वहां शांति कभी नहीं मिल सकती। शांति पाने के लिए आत्मा को रूहानी मंडलों की खोज करनी होगी। शांति की खोज करना हर व्यक्ति का अपना काम है। 10. दुनिया फकीरों से माया के भोग और पदार्थ मांगती है, जबकि फकीरों से हमें ऊंचे रूहानी मंडलों की यात्रा का तरीका और उस यात्रा के लिए सहायता मांगनी चाहिए, जिससे कि हम इस दुनिया की तकलीफों तथा आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकें। 11. धर्म मनुष्य के लिए हैं, मनुष्य धर्मों के लिए नहीं। सब ग्रंथ पुस्तकें मनुष्य के अंदर से आई हैं, पर असली भेद मनुष्य के अंदर है। किताबों में उस भेद का उल्लेख है, वो भेद नहीं। जब तक किसी महात्मा से मार्गदर्शन पाकर हम अंदर नहीं जाते, उन भेदों को नहीं पा सकते। मनुष्य अपने आप ग्रंथ पोथियों को पढ़ता है और तत्व की व्याख्या भी करता है, पर स्वयं तत्व से वंचित रह जाता है। 12. प्रत्येक इल्म के बारे में मनुष्य जानता है, पर अपनी आत्मा के बारे में, जिसके सहारे सब विद्याओं की प्राप्ति होती है, जिसके आधार पर मन बुद्धि का सब कारोबार चल रहा है, वो कुछ नहीं जानता। 13. संत कहते हैं कि पराई मजदूरी करके पराए गधे न बनो, बल्कि अपना काम करो जो आगे आपके काम आए। 14. जिन्हें अंदर जाना है, पर्दा खोलना है, परमात्मा से मिलना है, संतों का उपदेश उन लोगों के लिए है। जिन्हें अंदर जाना ही नहीं, उनके लिए यह तालीम नहीं है। 15. संतों का वास्तव में एक ही संदेश या उपदेश होता है। वे कहते हैं, हे आत्मा, तू अपने असली घर को भूल गई है। वो घर सचखंड में है और वहां पहुंचने का रास्ता शब्द धुन है जो तेरे अंदर है, और हम इस रास्ते पर तेरी रहनुमाई करेंगे। 16. संतमत एक ही करामात में विश्वास रखता है, और वो है, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई आत्मा को आजाद करके परमात्मा के साथ मिला देना। 17. संत कहते हैं कि भाई, तेरे अंदर सुरत है, तेरे अंदर ही शब्द है, ब्रह्म, पार ब्रह्म, खुद खुदा भी तेरे अंदर है। घर में ही सब कुछ होते हुए तू भूखा मरता है। जिसके घर में करोड़ रुपया दबा हुआ हो, लेकिन वो बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता फिरे, क्या आप उसे पागल ना कहेंगे? यही हाल हमारा है, जरा गौर करके देखो। 18. संत महात्मा हमें पुकार पुकार कर कहते हैं कि ये देश तेरा देश नहीं, ये कौम तेरी कौम नहीं, ये धर्म तेरे धर्म नहीं। तेरा देश सचखंड है, तेरी कौम सतनाम है, तेरा धर्म सतपुरुष है। परंतु जिस तरह मोरी के कीड़े बाग की हवा को पसंद नहीं करते, इसी तरह हम भी लौट लौट कर इस गंदे देश में रहना चाहते हैं। 19. बिना संतों के रास्ता नहीं मिलता। संत इस दुनिया में परमार्थ के बादशाह हैं। जो कोई सचखंड गया है, संतों के जरिए गया है। 20. संत जीवों के पाप नहीं देखते। अगर वे हमारे कर्मों की ओर देखें, तो कोई भी जीव उनके पास ठहरने के लायक नहीं है। 21. अगर मनुष्य इस सर्वव्यापी शब्द यानी परमात्मा से लाभ उठा सकता, या सर्वव्यापी शब्द यानी परमात्मा सीधे मनुष्य की सहायता कर सकता होता, तो संत महात्माओं को किसी भी समय में जीवों के उद्धार के लिए मनुष्य देह धारण करके उनके बीच आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी और समय में महात्मा को देह धारण करने की जरूरत थी, तो वही जरूरत आज भी है। 22. संत अगर चाहें तो अपनी शक्ति दूसरों को भी दे सकते हैं। वे वचन, स्पर्श या दृष्टि के द्वारा अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। 23. जो लोग संतों की हुजूरी में रहते हैं, उनके लिए बड़ी सावधानी से रहना जरूरी है। यदि वे संतों पर मनुष्य भाव कभी न लाएं, तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। 24. संत ये नहीं कहते कि गृहस्थ अच्छा और त्याग बुरा है, बल्कि अगर ये त्यागी बने तो पूरा बने। अगर त्यागी बन गया फिर गृहस्थियों का आसरा क्यों? लज्जत ना गृहस्थ में है ना त्याग में, लज्जत नाम में है, नाम इसके अंदर है। अगर एक बार अंदर पर्दा खुल जाए, नाम की लज्जत आ जाए, फिर चाहे गृहस्थ में रहे चाहे त्याग में। 25 संत कहते हैं, भाई करनी करो लेकिन सतगुरु की दया का आसरा लेकर। 26 नाम बड़ी अनमोल चीज है, अगर शीश देकर भी मिल जाए तो भी सस्ती है। 27 नाम जपने वाले के पास तो यमदूत भी नहीं आ सकते, उसके निकट भूत प्रेत और जादू टोना कैसे आएगा। 28 जब तक ध्यान शब्द धुन से नहीं जुड़ता तब तक मनुष्य भार ढोने वाले जानवर की तरह काम कर रहा है और उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। 29 सिवाय नाम के कोई कर्म नहीं जो बंधनों से आजाद कर सके, अगर मुक्ति है तो नाम में है। 30 अगर अंदर की लज्जत लेनी है, नाम का रस लेना है, तो शराबों कबाबों दुनिया के भोगों से नफरत करो। जितने ऐशो इशरत हैं उतने ही दुख, जितने भोग उतनी ही बीमारियां। 31 हम दुनिया के कामों में 10-12 घंटे बल्कि 14 घंटे भी दे देते हैं, परंतु नाम की ओर घंटा 2 घंटे भी नहीं लगाते। 32 यूं तो सारी दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है, मनमुख भी उसके बनाए हुए हैं, पापी भी उसके बनाए हुए हैं और पुण्य आत्माएं भी, लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं वे उसकी दरगाह में जाते हैं, बाकी नहीं। 33 शब्द धुन के लिए जितना अधिक हमारा प्रेम होगा उतनी ही अधिक हमें शांति मिलेगी और हमारी रूहानी उन्नति होगी। 34 सारे जपों का जप, सारे तपों का तप, संपूर्ण संयमों का संयम, संपूर्ण पवित्रता या शुचिता का निचोड़, भाव ये कि जो कुछ भी है वो नाम ही है। 35 नाम की महिमा करने के लिए संतों को लफ्ज नहीं मिलते, क्योंकि उसका नमूना दुनिया में है ही नहीं। हम अल्लाह परमेश्वर आदि लफ्जों को नाम समझते हैं, परंतु लफ्ज नाम नहीं। दुनिया लफ्जों में ही उलझ कर रह गई। लफ्ज सिर्फ आत्मा को नाम के साथ जोड़ने के लिए हैं, समझाने बुझाने के लिए हैं, लफ्ज नाम नहीं। 36 सच्चा कीर्तन यानी शब्द सबके अंदर हर वक्त हो रहा है, वो अखंड कीर्तन है। सब सो जाते हैं, वो नहीं सोता। वो अखंड कीर्तन हमारे अंदर है लेकिन वो मिलता नहीं। बड़े श्रेष्ठ भाग हों तो मिलता है, वो गुरु की कृपा से मिलता है। 37 यदि 7 द्वीपों और 7 समुद्रों का सोना निकाल कर ढेर लगा दें और मालिक के प्यारों से पूछें कि सोना लेना है अथवा नाम, तो वे कहते हैं कि हमें नाम ही चाहिए। 38 मन लज्जत का आशिक है और करोड़ों जन्मों से बाहर दुनिया के स्वाद लेता आ रहा है। ये विषय विकारों, सांसारिक भोगों और पदार्थों का प्रेमी है और उनसे कभी तृप्त नहीं होता। जब मन नाम की लज्जत ले लेता है तब वो कैद हो जाता है। मन को वश में करने की सारे संसार के लिए एक ही दवा है, यदि कोई उसे नहीं लेता तो ये उसकी अपनी लापरवाही है। 39 अगर 9 द्वारों से निकलकर आगे 10वीं गली में जाएं तो वहां ना कोई भाषा है न धर्म, वहां केवल नाम है, जिसे सुनकर काम क्रोध लोभ मोह आदि वश में आ जाते हैं। किसी मजहब कौम या देश से राग द्वेष नहीं रहता। संत उस नाम की महिमा करते हैं। यदि ये अंतर्मुख होकर अपनी सुरत को नाम के साथ जोड़ ले तो इसका जन्म मरण समाप्त हो जाएगा और जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा से मिलकर सुहागन हो जाएगी। 40 जब तुम इस संसार से जाओगे उस समय तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ जाने वाली केवल दो चीजें हैं, एक सतगुरु और दूसरा नाम। नाम आपके अंदर है और उसका भेद सतगुरु से मिलता है। 41. गुरु से गुरु मांगो या परमेश्वर, गुरु से सचखंड के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं मांगनी चाहिए। 42. गुरु से बढ़कर इस संसार में हमारा कोई सहायक नहीं। गुरु के सिवाय खंडों ब्रह्मांडों पर हमें कोई नहीं ले जा सकता। बस गुरु के तुल्य गुरु ही है। 43. गुरु का नूरी स्वरूप इतना मनमोहक होता है, उसमें इतनी कशिश होती है कि सूरत अपने आप ही खिंची चली जाती है और उसमें समा जाती है। अगर कोई अभ्यासी इसी जिंदगी में गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो उसे अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए। 44. गुरु की सबसे उत्तम सेवा यह है कि शिष्य गुरु के उपदेश का पालन करे। 45. इस जीवन में पूरे गुरु के मिलाप से बड़ी और कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु मिलने के बाद जन्म मरण के चक्कर में फिर वापस नहीं आना पड़ता। 46. आंतरिक गुरु सदा आपके साथ है, जो भीतरी दरवाजे पर आपके पहुंचने पर आपका स्वागत करने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा है। 47. जब आप सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेंगे तब आपको गुरु हर जगह नजर आएगा और आपका मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि दूसरों की कमियों को देखकर उन्हें दोषी ठहराना आपके लिए प्रायः असंभव हो जाएगा। 48. गुरु को उनके सेवक अपने बच्चों से भी अधिक प्यारे होते हैं। बाल बच्चे तो उनकी सांसारिक धन दौलत के हकदार होते हैं, लेकिन सत्संगी उनकी रूहानी दौलत के हकदार होते हैं। 49. नामदान के चुनाव में गुरु कभी भी गलती नहीं करता। केवल उन्हीं को नाम मिलता है जिनको मालिक वापस बुलाना चाहता है, और मालिक अपने कुछ चुने हुए जीवों को ही शब्द का भेद देता है। 50. गुरु दाता है, मांगता नहीं। वो देने को आता है, लेने को नहीं। 51. अजीब कारीगरी है, हवा मिट्टी अग्नि पानी और आकाश का पुतला बनाकर इसके अंदर करोड़ों खजाने रखे हुए हैं। करोड़ों देश खंड ब्रह्मांड बल्कि खुद मालिक इसके अंदर रहता है। अंदर चढ़ो और देखो कि अकाल पुरुष ने तुम्हारे अंदर क्या क्या रखा है। लेकिन हम मन के मुरीद यानी शिष्य हैं, मुर्शिद यानी सदगुरु के मुरीद नहीं। अगर मुर्शिद के मुरीद बन जाएं तो आज अंदर पर्दा खुल जाए। 52. संतमत में गुरु किसी भी जीव के पाप कर्म और अवगुणों को उसी प्रकार देखता है जैसे एक धोबी कपड़े की मैल को देखता है। उसकी नजर कपड़े पर होती है, मैल पर नहीं। उसका लक्ष्य कपड़े को किसी भी तरह साफ करना है। गुरु सर्वप्रथम सत्संग द्वारा जीव को सुधारने की कोशिश करता है। अगर ये तरीका असफल रहता है तब निर्धनता दुख तथा बीमारी रूपी साबुन लगाता है। अगर इन उपायों से भी काम नहीं बनता तो वो शिष्य को दूसरा जन्म दे देता है, और गुरु उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि वो अपने शिष्य को दुर्धाम तक नहीं पहुंचा देता। 53. सतगुरु तथा शब्द केवल ये दो ही जीव के सच्चे साथी हैं जो कि यहां और इसके बाद भी साथ रहते हैं। शेष सभी संबंधी स्वार्थ के संगी होते हैं और उनका प्यार हमें इस दुनिया में वापस लाता है। गुरु जैसा शुभचिंतक अपने सेवक के जीवन में आने वाली घटनाओं को देखकर बेपरवाह कैसे रह सकता है। 54. जिस तरह माता चाहती है कि बच्चा जल्दी से जल्दी बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसी प्रकार गुरु भी चाहता है कि उसके शिष्य इसी जीवन में तीसरे तिल में प्रवेश करें तथा शब्द धुन के सहारे इस जन्म में ही ऊपर के मंडलों में पहुंच जाएं और उन बातों का निजी अनुभव कर लें जो उन्होंने गुरु पर विश्वास करके सही मान ली थी। 55. इस कलयुग में जो दया जीवों पर हो रही है शायद ही किसी युग में हुई हो। काम क्रोध में तपते हुए जीवों को सद्गुरु आकर संभालता है। 56. जो परे से परे ऊंची से ऊंची अवस्था अकाल पुरुष की है वो सद्गुरु है। वो हमारे अंदर है लेकिन जब तक देह स्वरूप में सद्गुरु ना मिले हमें कोई फायदा नहीं। 57. गुरु की सर्वोत्तम सेवा शरीर में से सुरत को निकालकर तीसरे तिल पर एकाग्र करना है और तारामंडल चंद्रमा मंडल तथा सूर्य मंडल को पार करके अंतर में गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन करना है। 58. भजन के लिए सत्संग उसी तरह है जिस तरह फसल की रक्षा के लिए बाढ़। सत्संग वो पानी है जिसके द्वारा भजन ताजा और हरा भरा रहता है। 59. सत्संग में लगे रहो। अगर सुलगती आग को फूंक मारते रहोगे तो किसी ना किसी दिन भड़क ही जाएगी। 60. अगर संतों के पास रहने और उनकी आज्ञा का पालन करने का प्रभाव शीघ्र प्रतीत न हो तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार मन में भरे पड़े हैं जो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार पहले तो दब जाते हैं और फिर धीरे धीरे मिटते चले जाते हैं। जब तक ये संस्कार पूरी तरह दूर नहीं हो जाते मनुष्य को संतों की सेवा में लगे रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि ये संस्कार एक दिन अवश्य दूर हो जाएंगे। अंदर के संस्कारों को धोने के लिए समय की आवश्यकता होती है, ये जल्दबाजी का काम नहीं है। 61. गुरु का मिलाप, गुरु का सत्संग, नाम का मिलना और नाम की कमाई करने का मौका मिलना ऊंचे भाग्य का नतीजा है। अगर गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, नाम भी मिला लेकिन कमाई ना की तो कोई फायदा नहीं। 62. साध संगति के बराबर दुनिया में और कोई संगति नहीं है। इसमें आकर शराबी शराब छोड़ देते हैं, कबाबी कबाब छोड़ देते हैं, चोर चोरी छोड़ देते हैं, दुराचारी दुराचार छोड़ देते हैं। इसलिए परमेश्वर के पास यदि कोई बख्शने का या अपने साथ मिलाने का जरिया है तो साध संगति है। 63. संतों का एक एक वचन करोड़ करोड़ रुपए का होता है। हमें चाहिए कि जो कुछ सुने घर आकर उस पर विचार करें, लेकिन हमारी क्या हालत है? इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, सत्संग में गए और पल्ला झाड़कर चले आए, जैसे गए वैसे ही खाली वापस आ गए। 64. अगर अभ्यासी सुख दुख की सांसारिक घटनाओं से विचलित हो जाता है और अपनी एकाग्रता खो देता है तथा सुख दुख का अनुभव करता है तो इससे ये साफ जाहिर है कि सत्संग का भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ा है। 65. सतगुरु के अंदर सत प्रकट है, उसकी संगति का नाम ही सत्संग है। जहां सतगुरु सत का उपदेश देता है वहां जाने पर आत्मिक रंग चढ़ता है। जब जल के सरोवर के किनारे बैठने से शीतलता और अग्नि के पास बैठने से गर्मी आती है तो रूहानी बादशाहों के पास बैठने से उनका रंग क्यों नहीं चढ़ेगा। 66. बाहर के तीर्थों में स्नान करने से शरीर की मैल उतरती है, मन की मैल नहीं उतरती। सच्चा तीर्थ नाम है, वो मनुष्य के अंदर है। मन की मैल तो तभी उतरती है जबकि ये अंदर जाकर उस सच्चे तीर्थ में, सच्चे अमृतसर में स्नान करे। 67. अगर कोई इस दुनिया में खुशी खुशी मरता है तो केवल शब्द का अभ्यासी ही। बाकी दुनिया के लोग बादशाह से लेकर गरीब तक रोते हुए ही जाते हैं। 68. सिमरन तो बहुत से लोग करते हैं किंतु सच्ची महिमा तो उनकी है जो निष्काम सिमरन करते हैं। 69. जो कुछ पूरा गुरु हुक्म दे, वही भजन सिमरन है। 70. जिस प्रकार हमारे लिए घर के सब कार्य आवश्यक हैं, इसी प्रकार मालिक का भजन भी जरूरी है। इसलिए 100 काम छोड़कर भी मालिक का भजन कर लो। 71. मुक्ति के 3 साधन हैं, सिमरन, ध्यान और धुन। इन तीनों में से हर समय एक ना एक सत्संगी के अंदर जरूर होना चाहिए। 72. कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए, कैसे भी हालात क्यों ना हों, भजन में कभी भी नागा नहीं करना चाहिए। 73. भजन करना जवानी की मौत मरना है, ये कायरों और कमजोरों का काम नहीं। रातों को जागना, कम खाना, कम सोना, हर तरह की तकलीफ को सहना, मन को इच्छाओं से मोड़ना, ये सब कोई आसान काम नहीं। ये सब तभी होगा जब दिल में सद्गुरु के प्रेम के सिवाय और कोई प्यार बाकी न रहे। 74. जितनी जल्दी भजन सिमरन करेगा उतनी जल्दी पहुंच जाएगा, जितनी सुस्ती करेगा उतनी ही देर बाद जाएगा। 75. अगर सत्संगी का विश्वास अटूट और अटल है और वो प्रतिदिन भजन में समय देता है और उसे कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, तब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे संसार में वापस लाए। 76. किसी को कभी अपनी आध्यात्मिक उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सिमरन करने तथा शब्द धुन सुनने की भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। 77. आमदनी का 10वां भाग निकालना सरल है, तनख्वाह आई और 10वां भाग निकाल दिया, पर समय का 10वां भाग देना कठिन है। 2.5 घंटे अभ्यास करना शिष्य का कर्तव्य है, अगर अधिक समय देगा तो अधिक फल मिलेगा। 78. बीमारी भजन में बाधा डालती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग कोशिश करना छोड़ दें। शब्द धुन बीमारी के समय बंद नहीं होती। भजन करना और शब्द धुन सुनना आत्मा का काम है और आत्मा कभी बीमार नहीं होती, रोग शरीर को ही लगता है। वास्तव में बीमारी के समय परमात्मा की विशेष कृपा होती है, शब्द धुन अधिक स्पष्ट हो जाती है। अगर बीमारी के समय आसन लगाकर बैठना संभव नहीं हो तो लेटकर ही सिमरन या ध्यान करना चाहिए। 79. भजन में किसी न किसी वजह से नागा होने पर अगर सच्चा पश्चाताप हो तो ये अपने आप में एक तरह का भजन है। इस प्रकार की भावना से मन अंदर की ओर झुका रहता है, लेकिन भजन के लिए समय निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यास में नागा न करें, अभ्यास में बिताए गए हर क्षण की गिनती होती है। 80. जिसे सिमरन से प्यार नहीं, उसे गुरु के इश्क की अभी हवा तक नहीं लगी। जबानी जमा खर्च से मालिक नहीं मिलता, ये तो करनी का मार्ग है। जो सिर नहीं दे सकता वो परमात्मा को भी नहीं पा सकता। जब तक इस दुनिया का प्यार नहीं छूटता, सद्गुरु का प्यार जागे भी कैसे। 81. बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अगर भजन सिमरन करें तो दुनिया के काम रह जाते हैं। मैं कहता हूं कोई हर्ज नहीं होता, करके देख लो। भजन करना अपाहिजों और कायरों का काम नहीं, ये सूरमे और बहादुरों का काम है। 82. ग्रंथ पोथियों में रूहानी नजारों का जिक्र है, नजारे नहीं हैं, वे आपके अंदर हैं। जिस तरह उन महात्माओं ने अपने अंदर देखे, उसी तरह जब आप पर्दा खोलकर अंदर जाएंगे तो आपको भी नजारे मिलेंगे और परमात्मा भी मिलेगा। हम लोगों के ब्याह के गीत गाते हैं, अपना ब्याह नहीं करते। यानी हम लोगों की कमाई का जिक्र करते हैं, आप कमाई नहीं करते। लेकिन जब तक हम कमाई करके अंदर ना जाएं, शांति नहीं मिलती। 83. भजन बंदगी का संबंध मन और आत्मा के साथ है, शरीर से नहीं। शरीर से काम करते रहिए और मन को भजन में लगाए रखिए। एक मशीन पर काम करने वाला कारीगर अपना काम भी करता रहता है और साथ साथ गाता भी रहता है। 84. आपका काम आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना। अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो कुछ नहीं बनेगा। इसके विपरीत अगर नाम लेकर 8 दिन कमाई करो तो फायदा हो जाएगा। चाहे इस जन्म में करो चाहे अगले जन्म में करो, लेकिन करना पड़ेगा। 85 हमें एक दिन संसार छोड़ना है। अगर हम प्रेमी और आज्ञाकारी शिष्य हैं और इस जीवन काल में ही आगे के सफर की उचित तैयारी कर लेते हैं तो हमें मौत के समय कष्ट नहीं उठाना पड़ता। 86 सुरत शब्द योग का अभ्यास करने से शारीरिक और मानसिक थकावट कम होती है। नाम मिलने के बाद अगर कोई अभ्यासी हिदायत के मुताबिक 1 घंटा भी भजन करता है तो उसका बाहर भटकता मन निश्चल हो जाता है, नाड़ियां शांत हो जाती हैं और हृदय की धड़कन भी कई दर्जे कम हो जाती है। 87 जो मनुष्य भक्ति भाव की ओर आ जाता है उसका सब भय दूर हो जाता है, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों न हो। 88 नाम का सिमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है। आत्मा को उसका भोजन अवश्य देना चाहिए। जिस प्रकार तुम शरीर के लिए शरीर की खुराक नियम पूर्वक लेते हो, उसी तरह चाहे घर में रहो या सफर में, आत्मा को भी रूहानी खुराक अवश्य दो। कभी लापरवाही न करो। 89 जितने स्वाद उतने दुख, जितने भोग उतनी बीमारियां, जितनी ऐशो इशरत महफिलें उतनी ही चिंताएं। जो भजन करते हैं उनके दिलों में भक्ति प्रेम दीनता और शांति होती है। 90 जब ध्यान तीसरे तिल में जाता है तो गुरु के साथ प्रेम पूर्ण बातें होती हैं, ध्यान की एकाग्रता हो जाती है और घंटे की धुन सुनाई देती है। वो अवस्था अनोखी है जिसका वर्णन जबान नहीं कर सकती। 91 यदि कोई सिमरन की सहायता से ऊपर जाकर अंतर के पट नहीं खोलता तो वो मनुष्य पशु तुल्य है। 92 प्रेम करने से हृदय, ध्यान करने से आंखें और शब्द सुनने से कान निर्मल होते हैं। 93 हृदय सदा गुरु के प्रेम से भरा रहना चाहिए तथा मन में इतनी शक्ति या निडरता होनी चाहिए कि अगर सारी दुनिया का साम्राज्य भी मिल जाए या चला जाए ये फिर भी नहीं डोले। 94 दो चीजों की जरूरत है, एक विरह प्रेम और शौक, दूसरी मेहनत। अगर मेहनत है प्रेम नहीं या प्रेम है मेहनत नहीं तो कोई लाभ नहीं। 95 यदि प्रेम आ जाए तो जितने जप तप दान पुण्य तीर्थ मूर्ति मंदिर वेद शास्त्र का पठन पाठन आदि की जो भी क्रियाएं हैं सब उस प्रेम पर न्योछावर की जा सकती हैं। इनमें से कोई भी वस्तु प्रेम की बराबरी नहीं कर सकती। 96 जैसे रात दिन एक साथ एक जगह नहीं रह सकते, उसी तरह काम और परमात्मा का प्यार दोनों एक हृदय में नहीं रह सकते। 97 शब्द ही एकमात्र सार वस्तु है, शब्द ही ज्ञान है, शब्द ही सत्य है। लगातार कोशिश प्रेम और विश्वास द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। ये ना पैसे देकर खरीदा जा सकता है और ना ही मांगने से मिल सकता है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेम ही इसकी कीमत है। 98 जिस समय गुरु के प्रेम का रंग चढ़ता है तो जबान बंद हो जाती है, बाहर की आंखें बंद हो जाती हैं, मन शांत और स्थिर हो जाता है और सुरत गुरु के चरणों में लीन हो जाती है। परंतु ये रंग चढ़ाने के लिए कपड़ा साफ होना चाहिए। 99 प्रेमी प्रेम के मार्ग पर चलते हुए 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं ले सकता। इस बेचैनी या बेआरामी में जो खुशी या आराम है वो प्रेम पथ का दीवाना या गुरमुख ही जान सकता है, मनमुख नहीं जान सकता। 100 हे जीव, सुंदर या खूबसूरत शरीर अपना है या दूसरों का, इनके भुलावे में ना आ। गोरी हो या काली, ये सब मिट्टी की मूर्तियां हैं। चाहे तू बाहर से गोरा है या काला, शरीर का ख्याल न कर, ये तो एक कपड़ा है जो यहीं से लिया है और यहीं छोड़ जाना है। तो ऊंचा प्रेम पैदा कर, ऊंचा इश्क पैदा कर।
101। जिस तरह मछली और पानी का प्यार है, मछली पानी से निकली और तड़प कर मर गई, चातक स्वाति बूंद का आशिक है, नदी कुएं पोखर पानी से भरे हुए हैं, वो प्यासा मर जाएगा लेकिन ये पानी नहीं पिएगा, वो जब भी पिएगा स्वाति बूंद ही पिएगा। इसी तरह जो गुरु का शिष्य है, उसका धर्म है कि वो नाशवान दुनिया और उसके सामान के साथ प्यार न करे, बल्कि गुरु के साथ प्रेम करे। जब शिष्य का गुरु के साथ पूरा प्यार हो जाएगा, तब अंदर पर्दा खुलेगा, रूह ऊपर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। लेकिन ये कहता है कि बातों से ही पर्दा खुल जाए, ये हो नहीं सकता। 102। जब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता, गुरु के साथ पूरा प्यार पूरा भरोसा नहीं होता। अगर गुरु के साथ प्रेम हो जाए तो ये जीव कुंदन हो जाता है। 103। संत मत प्रेम का मजमून है, जान कुर्बान करने का मार्ग है। ये चीज बातों से नहीं मिलती बल्कि कुर्बानी से मिलती है, ये मेहनत की चीज है, कुर्बानी की चीज है। 104। जो मनुष्य संसार के सुखों में रमे हुए हैं, उनका प्रेम शरीर और शरीर के संबंधों के विष से भरा हुआ है। उनका प्यार आपको शुद्ध प्रेम की लगन नहीं दे सकता। दुनिया के रंग में रंगी उनकी प्रीति आपको दुनिया के रंग में रंग देगी, मालिक के रंग में कभी नहीं। संतजनों के अंतर में परमात्मा के लिए शुद्ध प्रेम होता है। यदि आप उनके साथ प्यार करेंगे तो आपके अंतर में भी परमात्मा का प्रेम जाग उठेगा। 105। जिस तरह जब तक कोई धातु पिघल ना जाए उसे सांचा स्वीकार नहीं करता, इसी तरह जब तक जीव के अंदर पूरी विरह तड़प पूरा प्रेम प्यार ना आ जाए, सदगुरु पर्दा नहीं खोलता। 106। सारा संसार दुखी है और सुख की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहा है, लेकिन किसी को सुख की प्राप्ति का सही तरीका नहीं मिला। सुख की प्राप्ति का सही उपाय संतों के पास है, ये ढूंढता है मंदिरों मस्जिदों मूर्तियों में। सुख इसके अंदर है, ये ढूंढता है बाहर, मिले कैसे। 107। असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने बाहर ही बाहर किसी को जप में लगा दिया है तो किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है कोई सोता ही नहीं, कोई पानी में खड़ा रहता है तो कोई धूनी जलाकर बैठा है। चार आग चारों तरफ, पांचवां सूरज पांच आग में जल रहा है। उससे जाकर पूछो, भले मानस, तेरे अंदर पांच आग हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, जिसमें सारा संसार जल रहा है। पहले उनसे बचने का उपाय तो कर, सारी दुनिया भूली हुई है। 108। जो महात्मा हमारे जमाने से पहले गुजर चुके हैं, यद्यपि वे अपने समय के पूर्ण महात्मा थे, फिर भी वे हमें कुछ लाभ नहीं दे सकते। यही संसार में बड़ी भूल है कि लोग पुराने वक्त के महात्माओं की टेक बांधकर जीवित सदगुरु की खोज नहीं करते। 109। आत्मा मन के द्वारा गुमराह है, मन इंद्रियों द्वारा और इंद्रियां विषय भोगों द्वारा गुमराह हैं। विषय भोग इंद्रियों को वश में रखते हैं, इंद्रियां मन को वश में रखती हैं और मन आत्मा को वश में रखता है। इस प्रकार ये सिलसिला उल्टा हो गया है। चाहिए तो ये था कि इंद्रियां भोगों को वश में रखती, मन इंद्रियों को वश में रखता और आत्मा मन को। कितने दुख की बात है कि आत्मा, जो सचखंड की रहने वाली तथा सतनाम की राजकुमारी है, इंद्रियों की दासी बनकर बुरी तरह विषय वासनाओं में फंसी हुई है। 110। मन सबसे अधिक शक्तिशाली चालाक और धूर्त दुश्मन है। आप मन की बात कभी नहीं सुनिए और इसे सदा गुरु के हुक्म के अधीन रखने की कोशिश कीजिए। आप जितनी अधिक इसकी चौकीदारी करेंगे, उतनी ही अधिक रूहानी अभ्यास में तरक्की होगी। 111। मन मैला है, बेईमान है, हमारा दुश्मन है, हमें अंदर नहीं जाने देता। हम इसके साथ प्यार किए बैठे हैं। जो दुश्मन के साथ प्यार करेगा वो सुखी कैसे हो सकता है। 112। जब तक मन आंतरिक रस का स्वाद नहीं लेता, इस जैसा कोई दुश्मन नहीं, और जब इसको चख लेता है तब इसके जैसा कोई वफादार नौकर नहीं। 113। जंगली जानवर भी एक शांत मन के सामने शांत हो जाते हैं। 114। मन हमारा शत्रु है, ये किसी न किसी बहाने सदा हमें अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करता रहता है। सभी परिस्थितियों में मन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना चाहिए। 115। रूह मन के वश में है, हम पर मन और इंद्रियों का जहर चढ़ा हुआ है। जिस तरह नशे में चूर शराबी किसी की बात नहीं सुनता, हम भी मन के भोगों के जहर के प्रभाव के कारण महात्मा की बात नहीं सुनते, फिर मालिक कैसे मिल सकता है। 116। संत मत में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। वो आत्मा जो शब्द धुन से अपना संपर्क बनाए रखती है, देर सवेर अपने घर अवश्य पहुंचेगी। 117। गुरु के लिए किसी आत्मा को ऊपर ले जाना मुश्किल नहीं, लेकिन पूरे भजन के बिना उस आत्मा को ऊपर ले जाने से आत्मा को कष्ट होता है। एक रेशमी कपड़े को जो कांटेदार पौधों पर फैला हुआ है, अगर एकाएक खींचा जाए तो वो फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसी तरह आत्मा जो कर्मों के कांटों में फंसी हुई है और शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, वो गुरु के प्यार से धीरे धीरे निर्मल होती है। गुरु की दया और शब्द की कमाई से आत्मा इन कर्मों के कांटों से निकलकर धीरे धीरे शरीर के रोम रोम से सिमट जाती है। 118। देखो ये आत्मा किस मुसीबत में फंसी है। कहाँ ये आत्मा वह दहूला शरीक, सत्पुरुष की अंश, अमरे रब्बी, जिसने सत्पुरुष की प्यारी बनना था, सत्पुरुष में समा कर सत्पुरुष बनना था, आज कहाँ धक्के खा रही है। 119। शब्द धुन चुंबक की तरह आत्मा को खींचती है। अगर आत्मा के ऊपर मन और माया का जंग न लगा हो तो आत्मा बंदूक की गोली के समान ऊपर चढ़ जाती है। ये जंग सिमरन द्वारा छुड़ाया जा सकता है। 120। बहुत सी ऐसी रूहें हैं जिन्होंने नाम तो लिया हुआ है लेकिन कमाई नहीं करती। उन्हें मन अंदर नहीं जाने देता, वे बाहर ही हाय हाय करती हैं। विचार करें, जब आप दुनिया के काम करते हैं, पेट के लिए रात को समय असमय जागते हैं, तोपों के सामने खड़े होते हैं, तो क्या भजन ही ऐसा कठिन है जो नहीं हो सकता। असली बात यह है कि मन आपका दुश्मन है जो भजन नहीं करने देता। मगर यदि कोई दुश्मन का कहना माने तो क्या वो जीने देगा? कभी नहीं। 121। जब आत्मा इस संसार में आती है तो इसे हम जीव का जन्मदिन कहते हैं, पर वास्तव में वो आत्मा स्थूल शरीर रूपी कब्र में कैद हो जाती है। इसलिए ये कहना ज्यादा उचित होगा कि यह जीवात्मा का मौत का दिन है। जब जीव संतों की शरण में आता है, नाम प्राप्त करता है और नाम से रिश्ता जोड़ता है, तब आत्मा शरीर रूपी कब्र से बाहर निकलती है। इसलिए ये कहना उचित होगा कि संतों से नाम की बख्शिश पाने के बाद उसका जन्म या पुनर्जन्म हुआ है। नाम लेने का दिन ही जीव का असली जन्मदिन है। 122। कोई भी जीव जो मन और माया के अधीन है, कर्म किए बिना रह नहीं सकता, और कर्मों का नियम जैसा बो वैसा काटो उस पर लागू रहता है। जितने अधिक कर्म कोई जीव करता है उतना ही अधिक जंजाल बढ़ता जाता है। जैसे जब कोई पक्षी जाल से निकलने के लिए संघर्ष करता है तब वो और अधिक उलझता जाता है। 123। दुनिया का काम करते हुए अपना काम यानी भजन सिमरन भी करते जाएं, जो कि हमारे साथ जाएगा। इसके विपरीत दुनिया के जितने भी काम करेंगे वे यहीं रह जाएंगे। 124। सिवाय गुरु की भक्ति के सब कर्म जन्म मरण का कारण है, आवागमन का चक्र है। 125। बीमारी कर्मों के कारण होती है ये हमारे बुरे प्रारब्ध कर्मों के कारण होती है और हमें प्रसन्न होना चाहिए कि बीमारी के द्वारा बुरे कर्म कट रहे हैं। बीमारी से कर्मों का बोझ हल्का होता है और कर्ज चुकता होता है। 126 पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा को इस संसार में कैद रखने के लिए जंजीरें हैं और दोनों ही काल की उस योजना का भाग हैं जो उसने आत्मा को इस जगत में फंसाए रखने के लिए बनाई है। 127 शिष्य की सांसारिक तरक्की, व्यापार में सफलता और असफलता उसके कर्मों के अनुसार होती है। जन्म से पूर्व ही उसकी जिंदगी की राह निश्चित हो जाती है। उसने जितने सांस लेने हैं, जितने ग्रास खाने हैं, जितने कदम चलना है, दुख और सुख, अमीरी और गरीबी, सफलता और असफलता, ये सभी पहले से ही निश्चित होते हैं। प्रारब्ध सचमुच बलवान है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, भजन के द्वारा आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि सत्संगी दुख या सुख महसूस ही नहीं करता। 128 ये संसार के पदार्थों का मोह ही है जो हमें बार बार नीचे खींच लाता है और जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। संसार में रहो पर संसार के न बनो, अपने सब कार्य करो पर निर्लिप्त मन से। 129 धार्मिक और नेक जीवन व्यतीत करना एक बात है और पूरे गुरु का मिलना दूसरी ही बात है। इन दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। नेक जीवन वाले धार्मिक लोगों को भी अपने नेक कर्मों का फल मिलेगा, किंतु उस फल को लेने के लिए उन्हें संसार में वापस आना होगा। 130 मांस, अंडा तथा शराब जहर हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल से नुकसान होता है। आप खुद ही अंदर जाकर देख लेंगे कि ऐसी चीजों के इस्तेमाल करने वालों को कैसे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, भले ही वे सत्संगी हों या गैर सत्संगी। 131 मांसाहार मनुष्य के दिल को सख्त और जीवों के प्रति क्रूर व निर्दयी बनाता है। ये दया और करुणा की भावनाओं को नष्ट कर देता है और रूहानी चढ़ाई में बाधा डालता है। 132 जो लोग परमात्मा को प्यार करते हैं और उससे मिलना चाहते हैं, वे किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। जानवरों का मांस खाने से इंसान जानवरों की श्रेणी में आ जाता है और वो जानवर सा ही बन जाता है। 133 मैं ये कह देना चाहता हूं कि मांस इत्यादि का भोजन भले ही एक लुकवा ही क्यों ना खाया जाए, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। खाने की तो बात छोड़िए, जो जीवों को मारने में मदद भी करते हैं वे भी दोषी हैं। आपका कहना है कि अंडे खाना उतना बुरा नहीं है जितना कि दूसरों का दिल तोड़ना, दोनों ही बुरे हैं। लेकिन एक टूटा हुआ दिल प्रेम द्वारा जोड़ा जा सकता है, किंतु वो जीव जिसे मार दिया गया है जीवित नहीं किया जा सकता। 134 अगर हम सद्गुरु का भाणा माने तो हमें कोई दुख नहीं होगा। अगर परिवार पानी में बह जाए, सद्गुरु का भाणा। अगर धन जाता रहे तो सद्गुरु का भाणा। गरज ये कि बीमार रखें सद्गुरु की मर्जी, राजी रखें तो उनकी मर्जी। 135 ऊंचे से ऊंचा भजन, ऊंचे से ऊंची रहनी और मालिक की बड़ी से बड़ी कृपा क्या है? ये कि हम उसके हुक्म में रहकर उसका भजन करें। वो चाहे दर दर भीख मंगाए, चाहे राज कराए, नंगा रखे, भूखा रखे, हम उसके भजन को ना छोड़ें और राजी बा रजा रहें, उसकी मौज में प्रसन्न रहें। अगर इस अवस्था में आ जाएं तो कोई दुख नहीं। 136 बड़ी बात तो ये है कि गुरु के हुक्म को और मन के हुक्म को सामने रखो, फिर देखो मन किधर जाता है। अगर गुरु के हुक्म पर दृढ़ रहो तो समझो कि मन को जीत लिया। अगर मन के वश में आ गया फिर समझो हार गया। लेकिन ऐसा कहना आसान है, रोज रोज मन की तरंगों को देखते रहो। जिस मनुष्य ने मन की चौकीदारी कर ली वो महात्मा बन गया। 137 भजन सिमरन चाहे थोड़ा ही हो गुरु का प्यार पूरा पूरा होना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दे, वे जो हुक्म दें उसका पालन करे, उसमें मन दखल न दे। 138 शिष्य सद्गुरु की रजा के आगे ऐसे सिर नवा देता है जिस प्रकार एक मुर्दा स्नान कराने वाले के आगे मिट्टी के ढेर के समान पड़ा रहता है। 139 लालची मनुष्य तृष्णा के कारण न तो कमाई हुई दौलत को भोग सकता है और ना ही उसको त्याग कर तृप्त हो सकता है, वो गुप्त अग्नि में जलता रहता है। सच बात तो यह है कि दौलत हमारे इस्तेमाल के लिए है। 140 मेहनत से कमाए हुए धन से खरीदी हुई सब्जी और अनाज आदि से सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए। खाना बनाने वाला भी सात्विक स्वभाव का हो, उस सात्विक स्वभाव का असर भोजन और उसके खाने वाले पर होता है। ऐसे आहार के खाने से मन शांत होगा और चित्त मालिक की याद में रहना चाहेगा। 141 कड़वे वचन सबसे बुरे हैं, इनके कारण सैकड़ों लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए। कोई बिरला गुरमुखी कड़वे वचन सहन कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं, बोल कुबोल साधु सहे, अवर्त सहा न जाए। किंतु गुरमुख के वचन जल के समान शीतल होते हैं, जब भी बरसेंगे अमृत के समान प्रभाव डालेंगे। 142 हमारे अंदर ये शक्ति होनी चाहिए कि जब चाहे मन सांसारिक काम करे और जब चाहे ये स्थिर हो जाए, इच्छा अनुसार शरीर के अंदर बाहर आ जा सकें। जब इस संसार में काम करना चाहें तब इस शरीर में वापस आ जाएं, और जब हम ऊपरी मंडलों में काम करना चाहें तो इस शरीर में से सिमट कर ऊपर उठ जाएं। 143 इच्छा ही दुख का कारण है, और वही आदमी वास्तव में निर्धन है जिसके अंदर अतृप्त इच्छाएं मौजूद हैं। जो इच्छाओं से रहित है वो शहंशाह है। 144 ये संसार मोह माया से भरपूर एक सघन वन है, जहां पर बहुत घनी आबादी है और सभी अपनी अपनी राह भूलकर बिना किसी मकसद के जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। 145 जीवात्मा का अपने आप को मालिक से अलग समझना ही होमे यानी अहम है। 146 मालिक का भक्त हमेशा अपनी हक हलाल की कमाई से गुजारा करता है। गलत तरीकों से कमाया हुआ खाना मन को पवित्र बनाता है और अभ्यास में बड़ी रुकावटें डालता है। 147 सब मनुष्यों का आपस में रूहानी संबंध है जिसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। धार्मिक रीति रिवाजों आदि में भेद है, पर रूहानियत की मूल बातें सबकी एक सी हैं। 148 अगर लोहा ही खोटा है तो पारस क्या करे। इसी प्रकार यदि शिष्य का हृदय मैला है तो गुरु क्या करे। 149 कोई एक कौम का हो या दूसरी का, एक देश का हो अथवा दूसरे देश का, सब एक ही मालिक के बच्चे हैं तथा एक ही बाग के रंग बिरंगे फूल हैं। 150 काल से मतलब वक्त या मौत नहीं है। काल वो ताकत है जो कि त्रिलोकी का प्रबंध कर रही है, और ये ताकत सत्पुरुष के अधीन है। 151 मनुष्य रातों को जाग सकता है, बंदूक की गोली के आगे खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार कम खाना कम सोना आसान है, लेकिन गुरु की शरण में आना बहुत कठिन है। एक मनुष्य को परमात्मा कहना बड़ी मुश्किल बात है। 152 अंदर जाने के लिए ख तो क्या, क की भी जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आलिम फाजिल इतनी जल्दी अंदर नहीं जा सकते जितनी जल्दी के अनपढ़ अंदर चले जाते हैं। मेरा अनुभव है कि अनपढ़ों को जब तवज्जो दी तो झट ख्याल अंदर चला गया। 153 किसी का दिल दुखाना महापाप है। एक मुसलमान फकीर अपने शिष्य को कहता है, शराब पीना पाप है लेकिन मैं तुझे बख्श दूंगा। काबे में आग लगाना पाप है, लेकिन ये भी तुमको माफ कर दूंगा, लेकिन अगर किसी का दिल दुखाया ये माफ नहीं करूंगा। 154। हर एक आदमी जो किसी न किसी मजहब के अनुसार अपना नित्य नेम अच्छी तरह करने लग जाए, कहता है कि मैं गुरुमत में आ गया हूं, लेकिन ये गुरुमत नहीं। जिस वक्त मन और आत्मा नाम के आशिक हो गए, उन्होंने 9 दरवाजों को छोड़ दिया, दोनों आंखों तक शरीर छोड़कर फिर ऊपर गए, आगे सद्गुरु मौजूद है। सद्गुरु को साथ लेकर तुरिया पद में गए, वहां जाकर पता लगा कि गुरमत क्या चीज है। 155। जो लोग मूर्तियों का ध्यान करेंगे वे नुकसान उठाएंगे। अगर मूर्ति का ही ध्यान करना है तो पिछले महात्मा की मूर्ति का ध्यान क्यों ना कर लिया जाए, अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। 156। अगर कोई गुरु की निंदा करे तो आप वहां से चुपचाप उठकर चले जाओ। रही अपनी निंदा, आप ना निंदा में नाराज हो न स्तुति में खुश। 157। आंतरिक आनंद न खरीदा जा सकता है और न मांगने से ही मिल सकता है। मेहनत कीजिए, अपनी चेतना को समेट लीजिए, ऊपर जाइए, आपको ये मिल जाएगा। 158। सच्चे आनंद का भंडार मनुष्य के अंदर है। 159। जब आप अज्ञानता का पर्दा चीर कर, यानी 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर की ओर जाते हैं, तब संसार का सुख वहां के आनंद के मुकाबले में बड़ा ही तुच्छ और नीरस प्रतीत होता है। 160। दुनिया के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो परमार्थ तो कमाना चाहता है, लेकिन लोक लाज या दुनिया के संकोच के कारण संत महात्माओं के पास नहीं जाता, उनका सत्संग नहीं सुनता। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को बड़ा मानता है और परमार्थ, सतगुरु और परमेश्वर को छोटा। 161। इंसान कमजोरियों का पुतला है और इन कमजोरियों का ज्ञान होना तब शुरू होता है जब सुरत शब्द योग का अभ्यास शुरू किया जाता है। कमजोरियां नाना प्रकार के रूप में सामने आने लगती हैं और एकाग्रता में विघ्न पहुंचाती हैं, परंतु गुरु की कृपा और शब्द की शक्ति से इन पर काबू पाया जा सकता है। सुरत शब्द के अभ्यास से इन कमजोरियों की जगह एक नई शक्ति जन्म लेती है और इंद्रियां वश में आ जाती हैं, फिर इंसान को इस दुनिया में अंधे की तरह भटकना नहीं पड़ता। 162। संत जानते हैं कि इंसान बहुत निर्बल है, वे इसे धीरे धीरे बलवान बनाते हैं। वे पहले जीव को नाम के संपर्क में लाते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी जला दी जाती है। जीव इस पर कुछ ध्यान देता है, समय बीतता जाता है, कुछ तो ठोकरों यानी बीमारी, परिवार में मृत्यु, रुपये का अभाव, मान इज्जत को ठेस के कारण, कुछ उम्र के कारण, कुछ सत्संग के द्वारा, कुछ प्रारब्ध कर्मों के भुगतान हो जाने के कारण और कुछ नाम भक्ति के द्वारा उसका ध्यान धीरे धीरे दुनिया से हटता जाता है। इस तरह वे अपने जीवन के अंत तक ऊपर तरक्की करने और नाम के साथ पूरी तरह जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। 163। रूह रूपी तोता शरीर रूपी पिंजरे में बैठा हुआ दुनिया की बोलियां बोलता है। जब ये अंदर तवज्जो देगा, अंदर शब्द का अमृत पिएगा, मन इंद्रियां वश में आ जाएंगी, ये पिंजरा टूट जाएगा और तोता सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। 164। पवित्र आचरण ही आध्यात्मिक महल की नींव है। जब तक हम भोगों के गुलाम हैं, तब तक परमार्थ के बारे में बातें धोखा हैं। चुंबक चमकते हुए लोहे को आकर्षित करेगा, ना कि जंग लगे हुए लोहे को। 165। हमेशा याद रखें कि मृत्यु हमारी ओर बढ़ रही है और हमें एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। 166। प्रेमी का प्रीतम से प्रेम इसी में है कि वो उसकी रजा और हुक्म में कोई आनाकानी ना करे। 167। सच्ची भक्ति और वाहेगुरु यानी परमेश्वर की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। 168। जब जीव नाम रूपी अमृत को पिएगा, तब वो मैं नहीं करेगा, बल्कि तू ही कहेगा। ये अमृत हर एक मनुष्य के अंतर में बरस रहा है। ये अमृत सदाचारी पुरुषों के अंदर ही नहीं बल्कि चोरों, ठगों, बदमाशों और पाप करने वालों के अंदर भी है। वो अमृत माया पी जाती है, काम क्रोध पी जाते हैं। 169 रूह मालिक की अंश है। सभी जीव एक ही नूर से उपजे हैं तथा उसी का नूर सबके अंदर चमक रहा है। फिर इनमें कौन बुरा है और कौन भला, जुज और कुल, अंश और अंशी में कोई भेद नहीं है। 170 हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक अगला और दूसरा पिछला। अगर सामने से देखें तो तस्वीर बहुत सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है, परंतु यदि पिछली ओर देखें तो खाली कागज और गत्ता है। इसी प्रकार अगर दुनिया को खाते पीते ऐशो इशरत करते देखें तो बड़ी सुखी दिखाई देती है, पर यदि इसको यहां से कूच करते हुए देखें तो पता चलता है कि सब रोते हुए जाते हैं। 171 लैंप के प्रकाश में चोर चोरी करता है, भक्त भजन करता है, पर लैंप चोर को बुरा नहीं कहता, भक्त को शाबाशी नहीं देता। उसे तो प्रकाश देना है, वो दे रहा है। इसी प्रकार परमात्मा सब जगह मौजूद है, पर उसके सर्वव्यापी होने का लाभ तभी होगा जब आप पर्दा खोलकर अंदर जाएंगे। फिर वो आपकी बात सुनेगा, आपको प्रेम, प्यार व शांति प्रदान करेगा, जन्म मरण का चक्कर मिटा देगा और शब्द के साथ मिला देगा। 172 लक्ष्य सही होने पर थोड़ा सा परिश्रम भी व्यर्थ नहीं जाता। 173 अगर नाम की लज्जत आ जाए तो जीव जीते जी मुक्त हो जाता है, फिर ये नाम की मस्ती में मस्त रहता है, ना किसी के साथ कोई झगड़ा ना फसाद। 174 ग्रंथ पोथियों को पढ़ना, दर्शन शास्त्रों की चर्चा करना तथा प्रार्थना करना पानी को मथने के समान है, जिसके मथने से झाग के अलावा कुछ भी नहीं निकल सकता। अंदर जाना और शब्द के सहारे ऊपर चढ़ना दूध मथने के समान है, जिससे प्रभु प्रेम का मक्खन निकलता है। 175 जो अंदर की लज्जत, स्वाद, मिठास, प्रेम और खुशी है, उसका नमूना दुनिया में नहीं है। जबान में ताकत नहीं कि उसका बयान कर सके। जो अंदर जाता है वो स्वाद लेता है लेकिन बता नहीं सकता। ये गूंगे की मिठाई है, जिस तरह गूंगे को मिठाई खिला दो तो वो क्या बयान करेगा। वो अचरज देश है, उसका आनंद भी अचरज है, स्वयं परमात्मा अचरज है, इसलिए वहां चुप रहना पड़ता है। वचन सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी। 1 केवल नाम पा लेने से ही कोई सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी को अपने जीवन को संतमत के सांचे में ढालना चाहिए। उसका हर एक विचार, वचन और कर्म संतमत के उसूलों के अनुसार होना चाहिए। कथनी से करनी ज्यादा जरूरी है। विचारों की शक्ति तो और भी अधिक है। सत्संगी का रोज का जीवन और रहन सहन बहुत साफ और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। उसकी रहनी से ही ये जाहिर होना चाहिए कि वो पूरे सद्गुरु का शिष्य है। 2 रत्ती भर अभ्यास मन भर ज्ञान से कहीं अच्छा है। संतमत के सिद्धांतों का ज्ञान किस काम का, अगर उनके अनुसार हमारी रहनी ना हो। अमल और अभ्यास से रहित विद्वान उस पशु के समान है जिसकी पीठ पर किताबों का भार लदा हो। उपदेश देने से अभ्यास करना 1000 गुना अच्छा है। उपदेश से उदाहरण अच्छा है। लंका का राजा रावण सिर्फ विद्वान ही नहीं था, वो वेदों का सबसे बड़ा टीकाकार पंडित भी था, पर उसके कर्मों ने उसके पांडित्य को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि वो पर स्त्री हरण के नीच कर्म पर उतर आया। नतीजा हुआ उसका और उसके कुल का सर्वनाश। 3 निर्मल और पाक दिल परमार्थ में तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। एक बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब कुत्ता तक किसी गंदी जगह पर नहीं बैठता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मैल से भरे दिल में परमात्मा के आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। 4 हमारा शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है, इसे मांस, अंडे, शराब आदि के इस्तेमाल से कभी भी नापाक नहीं करना चाहिए और ना ही इसे झूठ, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, घमंड, शेखी, अहंकार और सांसारिक मोह ममता के प्रवाह में बहने देना चाहिए। इस सब गंदगी को बुहार कर इस मंदिर को मालिक के रहने के लायक बनाना चाहिए। 5. कभी किसी का दिल न दुखाओ। ये ऐसा पाप है जिसे खुद मालिक भी माफ नहीं करता। ये परमार्थ की जड़ ही काट देता है। हमें अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। सदा नम्रता का व्यवहार करना चाहिए और मीठे वचन बोलने चाहिए। प्रसिद्ध मुसलमान संत शेख फरीद कहते हैं, जे तो पिर्यादी सिक्क हयाउ न ठाहे कहीदा। ऐ फरीद, अगर तुझे प्रियतम से मिलने की चाह है तो कभी किसी का दिल न दुखा। फरीदा, जो तै मारन मुक्कियां तिना न मारे कुम, आप पनड़ा कर जाइए पैर तिना दे चुम। अगर लोग तुझे मुक्के मारते हैं तो बदले में उन्हें न मार, बल्कि उनके पैरों को चूम कर अपने घर आ जा। 6. हमारा आंतरिक मार्ग डाकुओं से घिरा हुआ है। इनमें सबसे बदतर है काम वासना। ये चेतन माया लोभावनी बनकर हमें ठग लेती है। इस बहुत बड़े खतरे से होशियार रहो। जब भी मन में काम की भावना उठे, एक सिपाही की तरह सावधान होकर डटकर उसका सामना करो। उस समय अपने ध्यान को तीसरे तिल पर जमाकर अपने आप को सतगुरु के स्वरूप के पीछे छिपा लो। अपने आप को इस कोठरी में बंद कर लो। परमार्थ की दृष्टि से इस खतरे से सावधान होने का यही तरीका है। साहस और मजबूती के साथ मन का मुकाबला करो। मन से कभी हार न मानो। उसके सामने कभी हथियार मत डालो। दुश्मन के सामने झुककर हम कभी नहीं जीत सकते। मन को हरदम डांट फटकार कर रखो। 7. कायरों की कभी जीत नहीं होती। संतमत शूरवीरों का मार्ग है। वे प्रीतम यानी परमात्मा को भेंट के लिए अपने सिर को हथेली पर रखकर मैदान में उतरते हैं। किले यानी प्रीतम के धाम को फतह करने के लिए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है। सोहिनी को महिवाल से प्यार था। महिवाल नदी के पार रहता था। सोहिनी उससे मिलने के लिए मिट्टी के घड़े के सहारे तैरकर नदी पार करती थी। एक बार किसी ने उस घड़े की जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया। नदी बाढ़ पर थी। सोहिनी जानती थी कि नदी को पार करने की कोशिश मौत होगी, पर वो पीछे नहीं हटी। प्रेम की वेदी पर उसने हंसते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मालिक के लिए प्यार में हमें इस निडर स्त्री की मिसाल को अपनाना चाहिए। अपने भजन सिमरन में दृढ़ रहो। भजन में दृढ़तापूर्वक लगे रहो और बदन में जरा सा दर्द होने पर उठो नहीं। ये दर्द असल में शरीर रूपी कब्र में से रूह के सिमटाव की निशानी है। वो शरीर जिसे तुम इतना सजाते हो। 8. अगर संतों के मार्ग पर चलना चाहते हो तो तन, मन और धन की कुर्बानी के लिए तैयार रहो। अपनी इच्छाओं को रोको, मोह ममता को त्यागो और निंदा अथवा तानों को सहने के लिए तैयार रहो। अगर इस आदर्श के अनुसार अपना जीवन नहीं ढाल सकते तो सफलता की आशा न करो। याद रखो, संसार में कोई भी चीज उसकी पूरी कीमत अदा किए बगैर न पा सकते हो और न पा सकोगे। केवल मूर्ख ही बिना कीमत दिए कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। जो ये समझता है कि उसने बगैर मोल दिए कुछ पा लिया है, उसने असल में एक नए कर्ज का बोझ उठा लिया है। जब तक इस संसार में उस पर एक पाई का भी ऋण है, चुकाने के लिए उसे वापस यहां आना पड़ेगा। अगर अनाज का एक भी दाना पड़ोसी के खेत से अनजाने हमारे घर में आ गया है तो उसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। हम जो कुछ भी पाते हैं उसकी कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। ये कानून अटल है, इससे कोई बच नहीं सकता। ये भुगतान पैसे से, किसी चीज से या बराबरी के शुभ कर्मों के कुछ अंश देकर हो सकता है, पर हिसाब तो चुकाना ही होगा। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। सुख की कीमत दुख है। सोना तुम खान में से खोदकर ही निकाल सकते हो। मोती के लिए गहरे समंदर में गोता लगाना पड़ता है। बगैर दर्द के कोई बच्चा पैदा नहीं होता। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या क्या बलिदान नहीं करता, तो आप पूरा मूल चुकाए बगैर परमात्मा की प्राप्ति की आशा कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कम खाना, कम बोलना और कम सोना होगा। ज्यादा सामाजिक मेल जोल और चमक दमक से बचना होगा। अपने मन को दीन बनाना होगा, इंद्रियों को वश में करना होगा। आपकी और सब इच्छाएं नष्ट हो जानी चाहिए, सिर्फ एक मालिक से मिलने की इच्छा ही बाकी रहनी चाहिए। इस संकरी गली में दो के लिए जगह नहीं है, यहां सिर्फ एक के लिए ही स्थान है, या तो परमात्मा के लिए या दुनिया की मोह माया के लिए। अगर मालिक को पाना चाहते हैं तो बाकी सब कुछ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो परमार्थ की राह छोड़ दें। मालिक और उसके प्यार की चर्चा न करें। आप मालिक को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप के सिवाय और किसी को धोखा नहीं दे सकते। 9. परमार्थ के मार्ग में कामयाबी का गुर है भजन, ज्यादा भजन और ज्यादा भजन। सिर्फ 3 घंटे के भजन से दुनियादारी की ओर का पलड़ा ही भारी रहेगा। आपको पूरी तरह से सिर्फ मालिक के ख्याल में ही डूबे रहना चाहिए। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों, सारा दिन आपका ख्याल तीसरे तिल में मालिक की ओर लगा रहना चाहिए। 24 घंटे मालिक से मिलने की तीव्र इच्छा व बेताबी, उसके विरह की पीड़ा और तड़प बनी रहनी चाहिए। खाते पीते चलते फिरते सोते जागते प्रतिपल उसका नाम होंठों पर तथा उसका स्वरूप आंखों में बसा रहना चाहिए। अनगिनत युगों से हम मालिक से बिछुड़कर बाहर बेलगाम आवारा भटक रहे हैं। हम मन और माया की जंजीरों में इतने जकड़े हुए हैं कि मालिक को बिल्कुल भूल गए हैं। ये भी भूल गए हैं कि हम उसकी अंश हैं। हमें अंदर बाहर पूरे परिवर्तन की जरूरत है। हमें अपने मन से साफ कह देना होगा कि पिछले हजारों जन्मों में हम उसके हुक्म में चलते आए हैं, पर अब हमारा पक्का निश्चय है कि ये जन्म हम परमात्मा और सिर्फ परमात्मा की भक्ति में अर्पित कर दें। हमारी फुर्सत का हर एक क्षण भजन में लगना चाहिए। अब हमारा सारा समय मालिक का होना चाहिए। 10. नौजवान साधक एक विधवा युवती के समान है। दोनों को एक मजबूत किले में रहना चाहिए। आपका किला आपका सतगुरु है, हर दम उनकी शरण में रहें। उनके हुक्म के खिलाफ कभी कदम ना उठाएं। हमेशा उनके उपदेश और आदेश की चार दीवारी में रहें। उनकी शरण तथा ओट ले लें, उन्हें अपना एकमात्र आधार बना लें, तब आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। उस किले में अपने रहने के लिए एक सुरक्षित कोठरी बना लें जिसकी चार दीवारें हों। पहली मौन, दूसरी कम खाना, तीसरी कम सोना और चौथी एकांत में या अकेले में रहना। पहला मौन। बातचीत करने में काफी शारीरिक व आत्मिक शक्ति नष्ट होती है। मौन एक बड़ा गुण है। कम से कम बोलें, जब बहुत जरूरी हो तभी मुंह खोलें, और जब बोलना ही हो तो बहुत नम्रता और मिठास के साथ बोलें। कभी भी किसी बात पर गुस्सा ना करें। दुनिया को चलाने का भार आप पर नहीं है, इसे उसी के लिए छोड़ दें जिसका ये काम है। अगर कोई व्यक्ति नासमझी का व्यवहार करता है तो ये जरूरी नहीं कि आप उसकी नकल करें या उसका ढंग अपनाएं। हमेशा अपनी जबान यानी दोधारी तलवार को वश में रखें। दूसरा कम खाना। इसका संबंध भी जबान से है। हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि खाने में हमारी जबान को स्वाद आता है। हमें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हमें मालिक की भक्ति के हेतु जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। मनुष्य कम खाने से देवता और ज्यादा खाने से पशु बन जाता है। अधिक खाने और अधिक सोने से मनुष्य परमात्मा के दर से दूर हो जाता है। खाने और सोने का रस हमारी आंतरिक दृष्टि को धुंधला कर देता है। अपने पेट को खाली रख ताकि परमात्मा तुझे अपने प्रेम से भरपूर कर दे। अपना मुंह बंद कर ले ताकि परमात्मा तेरी आंखें खोल दे। तीसरा कम सोना। नींद और खाने का आपस में संबंध है। ज्यादा खाने से हमेशा सुस्ती और नींद आती है। ज्यादा खाना हमें आलसी बनाता है। हम जितना कम सोएंगे उतनी ही अधिक आत्मिक उन्नति कर सकेंगे। हम जितना सोते हैं उतनी नींद की हमें जरूरत नहीं। रात में कुछ घंटों की नींद ही काफी होती है। इससे हमारी आंतरिक उन्नति होती है। चौथा, एकांत। जहां तक बने अकेले रहना। परमार्थ के अभ्यासी के लिए जितना भी हो सके अकेले रहना जरूरी है। लोगों का मेलजोल हमें मनमत पर ले आता है। हमारी कोशिश तो गुरमत पर चलने की है। मनुष्यों से दूर भाग और अपने आप से ऊपर देख। 11. एक सत्संगी ने भजन के समय नींद आने की शिकायत की। महाराज जी ने फरमाया, साधक को उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए जब उसे नींद आने लगती है। उस समय मन का झुकाव स्वाभाविक ही तीसरे तिल की ओर होता है। इसलिए इस नींद जैसी अवस्था का स्वागत करो, पर सो न जाओ। भजन के समय उनींदापन महसूस हो सकता है, पर सोना नहीं चाहिए। जागते रहो और सचेत रहो। मन और इंद्रियों की नींद के समय की स्वाभाविक प्रवृत्ति का लाभ उठाओ और तीसरे तिल में आ जाओ। ये जागृत निद्रा की अवस्था बड़ी आनंदप्रद होती है। कुछ दिन इसका अभ्यास करो और देखो कि आंतरिक उन्नति में कितनी सहायक होती है। पर यह सावधानी रखनी चाहिए कि आप ना तो सो जाएं और ना पूरी तरह से जागते रहें। इस अवस्था में हमारा मन ब्राह्मंडी मन के साथ एक हो जाता है और कई नज़ारे व दृश्य देखता है। भजन करते समय और भजन के बाद कभी ना सोएं। 12. एक सत्संगी से जो रिटायर यानी सेवानिवृत्त होकर व पेंशन प्राप्त करके आया था, महाराज जी ने फरमाया, इस दिन को अपनी जिंदगी का बहुत खुशनसीब दिन समझिए। आपने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से पूरा किया। आपके सब सांसारिक दायित्व या फर्ज पूरे हो गए। अब आपको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। आज तक आप दूसरों का काम करते रहे हैं, अब अपना काम कीजिए। आपको अपने मन से सब सांसारिक इच्छाओं और लालसाओं को निकाल देना चाहिए। अपने मन से कह दें कि तू दुनिया में अपना खेल खेल चुका है, अब परमात्मा की बारी है। अपने मन को परिवार, संतान, घर जायदाद, रुपए पैसे, मान बढ़ाई, देश और सब सांसारिक संबंधों से हटा लें। मन को ऐसी अवस्था में ले आएं कि इन सब के होने या ना होने का आप पर कोई प्रभाव न पड़े। अब अपना पूरा ध्यान, सब सोच विचार और सारा समय परमात्मा और सिर्फ परमात्मा की ओर ही लगा दें। अब उसी के हो जाएं। मालिक के सिवाय और सब चीजों का ख्याल मन से निकाल दें। दिन रात भजन सिमरन की चिंता रखें, दूसरी किसी बात की नहीं। मेहनत करें, बेधड़क होकर मन के साथ लड़ें। सतगुरु आपके साथ हैं, उनकी मदद से मन को वश में कर लें। 13. हमारे भोजन का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये पुरानी कहावतें बिल्कुल सच हैं, जैसा आहार वैसे विचार और जैसा अन्न वैसा मन। राजसिक और तामसिक भोजन से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। सात्विक भोजन से शुद्ध विचार आते हैं। शुद्ध विचारों से अच्छा चरित्र बनता है और परमात्मा के प्रेम के लिए अच्छा चरित्र बहुत जरूरी है। परमात्मा के प्रेम के बिना कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। सदा शुद्ध सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन भी नेकी और ईमानदारी से कमाया जाना चाहिए और उस कमाई में से बुजुर्गों को और दूसरे सब लोगों को उनका उचित हिस्सा दे दिया जाना चाहिए। खाना सादा और हल्का होना चाहिए और उसे प्रसन्नचित होकर पकाना और खाना चाहिए। कम खाना चाहिए और खाने से पहले देने वाले यानी परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। 14. मलिन विचार आत्मिक उन्नति में बहुत बड़ी रुकावट होते हैं। वे विष के समान होते हैं। सावधान रहो और बुरे विचारों से फौरन मन को मोड़ लो। अगर फुंसी को खुजलाओगे तो वह बढ़कर एक दिन जहर से भरा फोड़ा बन जाएगी। 15. अपने मन को हमेशा सिमरन में लगाए रखो। क्या इसमें कुछ खर्च होता है? हर समय नाम का सिमरन करते रहो, जैसे छोटे बच्चे 1, 2, 3, 4 दोहराते रहते हैं। सिमरन एक बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ सिमरन से ही हमारे अंदर संकल्प शक्ति का विकास हो सकता है। सिमरन धीरज और दृढ़ता के साथ बिना रुके करते रहना चाहिए। ये लगातार बिना रुके अटूट रूप से निरंतर चलता रहना चाहिए। 16. एक सत्संगी ने शिकायत की, महाराज जी मेरा मन मुझे भजन में बैठने नहीं देता और जब मैं बैठता हूं तो ये सिमरन भुला देता है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो आपका मन और क्या करे, वो तो बड़ी ईमानदारी और तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, क्या आपको भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से मन का मुकाबला करें। इस अवस्था में मन और आत्मा के बीच जबरदस्त लड़ाई है, मन के साथ जरा भी रियायत ना करें। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि पहले आप ही मन पर धावा बोल दें और उस पर चोट करते रहें ताकि उसे कभी बदले में हमला करने का मौका ही ना मिले। 17. ध्यान को पूरी तरह से तीसरे तिल पर एकाग्र करके भजन करना चाहिए। ध्यान या तवज्जो के साथ ही सिमरन होना चाहिए और उस समय तन मन और जबान स्थिर तथा देखने और सुनने की शक्तियां क्रियारहित रहनी चाहिए। 18. सत्संगियों को विचार करने की, स्पष्ट और सही विचार करने की आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत कम लोग विचार करते हैं। हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम विचार नहीं करते। लोग कामवासना का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे सोचते नहीं। एक माता अपने पुत्र की मृत्यु पर क्यों रोती है? कई लोग धन या संपत्ति के नुकसान पर आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वे सोचते नहीं। विचार 90% अभ्यास है। विचारशीलता एक वरदान है। ये थोड़े से अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। हम अपने बहुत से काम बिना सोचे समझे एकाएक ही कर बैठते हैं। हमेशा शांतिपूर्वक विचार करें। अगर आप ये जानते कि क्रोध से आपके जिगर और हृदय को कितना नुकसान होता है तो आप कभी किसी भी बात पर गुस्सा न करते। किसी डॉक्टर से पूछिए, वो आपको बताएगा कि गुस्से के दौर में किस प्रकार हमारे खून में जहर फैल जाता है। 19. क्या चिंता से आज तक कोई भी समस्या हल हुई है? चिंता उलझे हुए विचारों से उत्पन्न होती है। स्पष्ट व सही विचार की आदत डालें और अपने दुख और कष्ट को हंसकर भुला दें। जब तक मनुष्य हंस सकता है, खुद शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हंसने में कोई खर्चा होता है? हंसना उतना ही आसान है जितना कि चिंता करना और चिड़चिड़ाना। केवल शुरू में थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। कुछ समय के बाद तो हंसना एक आदत ही बन जाती है। आपका चिंता करना ये बतलाता है कि आपको परमात्मा की रहमत में और खुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं है। मालिक को उसकी मौज के माफी की सब कुछ करने दें। उसे अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश न करें। अपने आप को उसकी मौज और रजा में राजी रखेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। 20. तेज शस्त्र से शरीर पर किया गया घाव तो समय पाकर भर जाता है, पर जबान द्वारा इंसान के दिल पर किया गया जख्म कभी नहीं भरता। कभी किसी जीव का दिल न दुखाओ। इस बात को भी उतना ही जरूरी समझना चाहिए जितने जरूरी मांस आदि न खाने के वे प्रण हैं जो हम नामदान के समय लेते हैं। अनुशासन और नियमों का सख्ती के साथ पालन किए बिना भजन और अभ्यास नहीं हो सकता। मांस आदि न खाने के वचन का ध्येय है कि हमारे मन में अहिंसा व दया के भाव जम जाएं। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी जीव को हानि और चोट न पहुंचाना। याद रखो, जिंदगी सबको प्यारी है। पतंजलि ऋषि ने योगियों के लिए अपने योग शास्त्र में 5 यमों और 5 नियमों का वर्णन किया है। ये दैनिक जीवन के लिए बड़े अच्छे उसूल हैं जिनका पालन करके सत्संगी भी लाभ उठा सकते हैं। 5 यम ये हैं। पहला, अहिंसा। किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से चोट या हानि न पहुंचाना। दूसरा, सत्य। झूठ न बोलना, अर्थात मन, वचन और कर्म से सच्चा होना। तीसरा, अस्तेय। चोरी न करना, जो वस्तु आपकी नहीं है उसकी न तो इच्छा करना और ना ही उसे ग्रहण करना। चौथा, ब्रह्मचर्य। मन, वचन और कर्म से काम वासना का त्याग अर्थात संयम से रहना तथा वीर्य की रक्षा करना। पांचवा, अपरिग्रह, संग्रह की भावना का त्याग, अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा न करना, त्याग करना। पांच नियम ये हैं। पहला, शौच यानी स्वच्छता। दूसरा, संतोष यानी तृप्ति। तीसरा, तप यानी स्वेच्छा से आत्मनियंत्रण करना। चौथा, स्वाध्याय यानी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। पांचवा, ईश्वर प्रणिधान यानी परमात्मा में अटूट विश्वास रखना और अपने आप को उसकी मौज पर छोड़ देना, परमात्मा की प्राप्ति की कोशिश करना। 21. एक बार सत्संग में महाराज जी सतगुरु के अद्भुत आंतरिक नूरी स्वरूप के तेज और जलाल का वर्णन कर रहे थे। एक सत्संगी उठा और बोला, महाराज जी, मुझे आपके नूरी स्वरूप के रोज दर्शन होते थे, पर अब एक महीने से दर्शन नहीं हुए हैं। महाराज जी ने कहा, आपके मन पर किसी रंज या खुशी का असर पड़ा होगा। सत्संगी ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। तब महाराज जी ने फरमाया, सद्गुरु तो हमेशा अंतर में मौजूद है, जब हमारा मन एकाग्र होकर ऊपर चला जाता है तो उनके दर्शन करता है, पर जब वो व्याकुल होता है तब नीचे गिर जाता है और सद्गुरु के दर्शन नहीं कर पाता। क्या रंज करने से आज तक किसी का कोई काम बना है, या चिंता से कभी किसी का भला हुआ है? भजन सिमरन बराबर करते रहो, यही शांति, सुख और आनंद का स्रोत है। 22. युवावस्था में साफ, पवित्र और सदाचारपूर्ण जीवन बिताने के लिए एक पैगंबर के जैसे साहस, वीरता और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। 23. आप जानना चाहते हैं कि पूरा गुरु कौन होता है और उसकी दात क्या होती है। पूरा गुरु मनुष्य के रूप में परमात्मा या परमात्मा में समाया हुआ मनुष्य होता है। सद्गुरु वो मनुष्य होता है जिसके रूप में कुल मालिक सतनाम या अनहत शब्द इस धरती पर आकर निवास करता है। वो देहधारी शब्द होता है। सत्पुरुष अपना धाम छोड़कर अपने आप को मनुष्य के चोले में छिपाकर अपने पुत्र की तलाश में उन खाना बदोशों की बस्ती में जाता है जो उसे यानी पुत्र को उठाकर ले गए हैं। वो उन खाना बदोशों के साथ रहता है और उनके जैसा ही जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उसका पुत्र उसे नहीं पहचानता, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। बड़ी मुश्किल से वो अपने पुत्र को अपने साथ महल में चलने के लिए मना लेता है, ताकि पुत्र खुद अपनी आंखों से देख सके कि वो कितनी बड़ी दौलत का हकदार है। उसे खाना बदोशों की बस्ती से निकालकर राजमहल में लाकर वो बैठने को सिंहासन देता है। वो तब तक अपने पुत्र को नहीं छोड़ता जब तक पुत्र अपने राजमहल के वैभव में पूरी तरह बस नहीं जाता। 24. वही सुखी है जिसकी इच्छाएं व जरूरतें कम हैं। इच्छाएं व जरूरतें जितनी कम होंगी, इंसान उतना ही अधिक सुखी होगा।
जिनको कछु ना चाहिए सोई साहनसा।
हमारी इच्छाएं ही हमें दरिद्र बनाती हैं। जिसकी कोई इच्छा नहीं वही सबसे अमीर है। अपने भारत निवास के दिनों में सिकंदर महान एक साधु से मिलने गया जो ब्यास नदी के किनारे रहता था। सिकंदर ने उसकी असाधारण शक्तियों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। सिकंदर ने उसे एक बड़ के पत्तों से बनाई गई छतरी की छाया में ताड़ के पत्ते पर बैठे हुए देखा। यही उस साधु की संपत्ति थी। जब सिकंदर को ये पता चला कि उस साधु ने मूसलाधार वर्षा, कड़कती धूप और तेज सर्दी में भी अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारी है, तो उसने साधु के लिए घर बनवाना चाहा। साधु ने इनकार कर दिया और कहा, मकान क्यों बनाया जाए, क्या हमें यहां हमेशा के लिए रहना है? तब सिकंदर ने पूछा, क्या मैं आपकी कोई और सेवा कर सकता हूं? इस पर साधु ने उत्तर दिया, हां, मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी आदमी मेरे पास ना आए। सिकंदर ने अपनी मृत्यु के समय अपना आधा राज्य उस व्यक्ति को देने की घोषणा की जो उसे केवल इतने समय के लिए जीवित रख सके जिसमें वो अपनी माता से मिल सके। परंतु वैद्यों ने उत्तर दिया कि चाहे वो अपना सारा राज्य भी दे दे, तो भी वे उसकी जिंदगी में एक सांस भी नहीं जोड़ सकते। राजा की आंखों से आंसू बह निकले और एक ठंडी आह भरकर उसने कहा, अफसोस, अगर मुझे मालूम होता कि एक एक सांस इतनी कीमती है तो मैं कभी भी अपनी सांसों को फिजूल के कामों में बर्बाद न करता। तब उसने हुक्म दिया कि अर्थी ले जाते समय उसके दोनों हाथ कफन के बाहर रखे जाएं और हथेलियां ऊपर की ओर हों, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि सिकंदर महान, जो विश्व विजय के स्वप्न देखा करता था, इस संसार से खाली हाथ जा रहा है। 25. पवित्र नैतिक जीवन बिताने पर जितना भी जोर दिया जाए कम है। आत्मिक उन्नति के लिए उच्च नैतिक चरित्र बहुत ही जरूरी है। नाम और काम एक साथ नहीं रह सकते, ये वैसे ही एक दूसरे के वैरी हैं जैसे अंधकार और प्रकाश। जिस हृदय में काम है उसमें नाम प्रवेश नहीं करता, और जब नाम आता है तो काम गायब हो जाता है। सत्संगी को संसार के लिए मिसाल बनकर रहना चाहिए। उसके नेत्रों से पवित्रता झलकनी चाहिए, उसके शरीर से परमार्थ की खुशबू आनी चाहिए। भोग विलास के जीवन से बचो और काम भावना को मन से निकाल दो। शरीर के 9 द्वारों से ऊपर उठने पर ही नेक, शांत और संतोषपूर्ण जीवन बिताया जा सकता है। एक ओर तो काम वासना में डूबे रहना और दूसरी ओर मालिक के दरबार में प्रवेश पाने की आशा करना निरा मजाक है। ऐसे लोगों के लिए वो द्वार कभी नहीं खुलेगा। 26. सतगुरु का नूरी स्वरूप इतना ज्योतिर्मय, सुंदर और आकर्षक है कि उसके दर्शन के बाद इस संसार का कोई भी रूप हमें सुंदर नहीं लगता और संसार का सब मोह छूट जाता है। मालिक के प्रति तीव्र और अगाध प्रेम तथा उसके वियोग की ज्वाला और तड़प उसके दर्शन की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। प्रेम की आग सब गंदगी और मैल को भस्म कर देती है, केवल प्रीतम से मिलाप की इच्छा ही बाकी रह जाती है। 27. किसी की निंदा ना करो, ये महापाप है। दूसरे पापों में शायद कोई सुख या मनोविनोद होता हो, पर बताओ निंदा में कौन सा सुख है। शिराज के प्रसिद्ध महात्मा शेख सैदी कहते हैं, अगर मुझे किसी की निंदा करनी हो तो मैं अपनी माता की ही निंदा करूंगा, ताकि मेरे अच्छे कर्मों का फल यदि किसी को मिलना है तो वो मेरी माता को ही मिले। हुजूर महाराज बाबा सावंत सिंह जी कहा करते थे कि निंदा करने वाले के सभी अच्छे कर्म निंदित व्यक्ति के लेखे में जमा हो जाते हैं। निंदक हमसे मजदूरी लिए बगैर हमारे पापों को धो देता है। 28. अगर कोई हमारी थोड़ी सी भी मदद करता है तो हम कितने खुले दिल से उसका धन्यवाद करते हैं। माता पिता और शिक्षक अपने बच्चों में सदाचार के गुण जागृत करने की कोशिश तो करते हैं, पर अफसोस, बच्चे अपने विकास काल में आत्मिक खुराक से खाली रह जाते हैं। उनकी शिक्षा में इससे ज्यादा खोखलापन और क्या हो सकता है कि वे परमात्मा के बारे में अनजान हैं, जो हर नेकी और गुण का स्रोत तथा सब दातों का भंडार है। जब शिक्षा में इस बुनियादी उसूल को नज़रअंदाज किया जाता है तो आगे चलकर जीवन भ्रम और उलझनों से घिर जाता है, तथा आदरपूर्ण व्यवहार और निर्मल नैतिक चरित्र की परंपरा का ह्रास या पतन हो जाता है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को परमात्मा और परमार्थ के बारे में बतलाएं, उनमें सही व स्वस्थ विचारधारा को जागृत करें और उनके जीवन को सदाचार की नींव पर खड़ा करें। 29. ये जीवन हमारे अस्तित्व की अनंत श्रृंखला की एक कड़ी है। शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा सदा रहती है, वह अमर है। वह मालिक से अपने दुखपूर्ण वियोग और संसार में व्यर्थ भटकने की अवस्था से निकलकर परमात्मा के धाम में आनंदपूर्वक वापस लौटने का मार्ग अपनाती है। महान राजस्थानी संत दादू कहते हैं, मैं तब भी था जब संसार नहीं था, मैं तब भी रहूंगा जब संसार का अंत हो जाएगा। 30. बेमतलब और बेकार की बातचीत में न लगें। अगर आपको अपनी रूहानी दौलत से महरूम होने का बोध है तो हर मिनट अपनी रूहानी विरासत को पाने की कोशिश करें। अगर आप फिजूल की बातचीत यानी गपशप करते हैं तो परमात्मा से की गई आपकी प्रार्थनाएं मात्र मजाक हैं। ये गपशप आपको ढोंगी साबित करती है, ये रूहानियत की जड़ को ही काट देती है। एक ओर तो परमात्मा से दया मेहर की याचना करना और दूसरी ओर अपने कीमती समय और शक्ति को बेकार खर्च करना, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं। सोचिए अधिक, बोलिए कम। 31. मेरे पास अक्सर सत्संगियों की शिकायतें आती हैं कि मन उनको अभ्यास में नहीं बैठने देता। वे बहुत आसानी से मन के बहकावे में आ जाते हैं। अगर आत्मा में बल नहीं है और शरीर भी कमजोर है तो इलाज ही क्या है? आसन पर बैठे रहने और रुख के सिमटने से जरा सी भी तकलीफ होते ही मन अभ्यासी को भजन से उठने के लिए उकसाता है। हमें इस अटल नियम को याद रखना चाहिए, बगैर तकलीफ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। केवल बड़े साहसी योद्धा ही जो मौत को गले लगाने यानी दुनिया की खुशियों से मुंह मोड़कर नौ द्वारों को खाली करने और काल तथा कर्मों के दुर्गम अंधकारपूर्ण गढ़ पर धावा बोलने के लिए तैयार हों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सुनिए प्रेमी लोग क्या कहते हैं। ऐ फरीद, उसके महल में पहुंचने की कोशिश में मेरा शरीर भट्टी के समान तप रहा है और मेरी हड्डियां लकड़ी की तरह जल रही हैं। क्या मैं रुक जाऊं? नहीं, जब मेरे पैर सूख जाएंगे और हिल भी ना सकेंगे तब अपने प्रीतम की एक झलक मात्र देखने के लिए मैं अपने सर के बल चलूंगा। 32. सत्संग में एक अमरीकन महिला ने कर्मों और संस्कारों के बारे में पूछा। महाराज जी ने उत्तर दिया, 1. कर्म हमारे किए हुए कामों और उनकी प्रतिक्रिया या फल को कहते हैं। कारण और कार्य का, कर्म और फल का यह कानून अपने आप लागू होता है। अपने किए कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। जो हमने बोया है उसे काटना ही होगा। 2. मनुष्य के पिछले कर्मों से जन्म लेने वाली सहज पर दबी हुई प्रवृत्तियों को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार उसके पिछले जन्मों से चले आते हैं और इस जन्म में उसके कर्मों को प्रभावित करते हैं। 33. उसी महिला ने सत्य और परमात्मा की खोज में तर्क और बुद्धि की उपयोगिता के बारे में कुछ सवाल पूछे। महाराज जी ने फरमाया, ध्यानपूर्वक सुनिए। परमात्मा ने हमें बुद्धि केवल इस दृश्य या इंद्रिय गोचर संसार का कामकाज करने के लिए ही दी थी। बुद्धि वो शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने सांसारिक अनुभवों का विश्लेषण करके कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उसे नजर में रखकर आगे ठीक तरह से काम कर सकते हैं। जब बुद्धि का कार्य क्षेत्र इतना सीमित है तो वो उस सूक्ष्म और गहरी रूहानी हकीकत को कैसे समझ सकती है? सांसारिक अनुभवों का संबंध तो बाहर की ओर ले जाने वाले नौ द्वारों से है, जबकि आत्मा का क्षेत्र दसवें द्वार के अंदर है। और फिर वातावरण तथा परंपरा, देश और काल, पसंद व नापसंद आदि के साथ तर्क प्रणाली और बुद्धि में अच्छा खासा परिवर्तन होता रहता है। एक रशियन और एक अमरीकन, एक युवा और एक वृद्ध मनुष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग ढंग से सोचते हैं। काम और क्रोध में मनुष्य के विचार कितने अधिक दूषित हो जाते हैं। जब तर्क और बुद्धि का मापदंड या पैमाना हरदम बदलता रहता है तो इसके माप पर क्या भरोसा किया जा सकता है? अमरीकन महिला ने पूछा, तब परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें किसका आसरा लेना चाहिए? महाराज जी ने समझाया, जब जिज्ञासु नौ द्वारों को बंद करके दुनिया से मुंह मोड़कर अंतर की यात्रा शुरू करता है तब परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। अंतर के अनुभव और उनकी समझ बुद्धि की पहुंच से परे है। केवल आत्मा ही उनको समझ सकती है। उस गूढ़ यानी रूहानी रहस्य को कोई भी बौद्धिक चतुराई सुलझा नहीं सकती, पर आत्मा उस हकीकत को, परम सत्य को देख लेती है और जान लेती है। परमात्मा की अंश होने के नाते आत्मा जैसे जैसे उसकी चेतनता बढ़ती है उस असीम को समझने लगती है, और जब परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है तब आत्मा अपने मूल यानी परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए इस कमजोर और सीमित बुद्धि से केवल तर्क के खिलवाड़ द्वारा सूक्ष्म आत्मिक रहस्यों को समझने की आशा न करो। सांसारिक तथ्यों के क्षेत्र में भी बहुत कुछ हमारी समझ से परे रह जाता है। फिर इंद्रियों की पहुंच से परे के लोगों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? एक बच्चा अपनी माता से पूछता है, माँ मैं कैसे पैदा हुआ? माँ को जवाब मालूम है, पर वो ये भी जानती है कि बच्चा समझ नहीं सकता, इसलिए वो हंसकर जवाब देती है, मैंने एक खानाबदोश लड़की से तुझे एक पैसे में मोल लिया है। 34. एक महिला जिसका पुत्र पढ़ाई के लिए हवाई जहाज से विदेश यानी यूरोप जा रहा था, महाराज जी के पास आई और बोली, महाराज जी मैं आजकल बहुत चिंतित रहती हूँ। महाराज जी ने उसकी चिंता का कारण पूछा। वो बोली, मेरा लड़का आगे पढ़ाई के लिए कल हवाई जहाज से यूरोप जा रहा है। महाराज जी कुछ मुस्कुराए, उनके मुख पर सदा मधुर हास रहता था और बोले, अच्छा तो इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता हवाई यात्रा की है, पढ़ाई की या कल की? महिला भी हंस पड़ी और बोली, महाराज जी जब मैं हवाई यात्रा के खतरों का ख्याल करती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। महाराज जी ने फरमाया, हवाई यात्रा के आराम तथा सुविधा और उससे मंजिल तक जल्दी पहुँचने के बारे में क्यों ना सोचा जाए? महाराज जी ने आगे फरमाया, मनुष्य इसी तरह अपने आप के लिए चिंताएं बना लेता है। हमारी 99% चिंताएं हमारी अपनी पैदा की हुई हैं और आधारहीन होती हैं। महाराज जी ने शेक्सपियर की एक पंक्ति दोहराई जिसका अर्थ है कि आने वाली विपत्ति का डर हमें खुद उस विपत्ति से कहीं अधिक दुखी कर देता है। विपत्ति तो शायद आए और शायद आए ही नहीं। 35. परमात्मा के प्रति प्रेम बनाए रखने के लिए हमारे प्रेम को लगातार खुराक की जरूरत है। बगैर ईंधन के आग की तरह वो बुझ सकता है। भजन सिमरन वो ईंधन है जो इस आग को जलाए रखता है। इसलिए भजन में एक दिन का भी नागा ना करो। भजन में एक दिन की लापरवाही हमारे सफर की प्रगति को एक महीना पीछे कर देती है। 36. जिंदगी इस लायक नहीं है कि हम इसके बारे में बहुत चिंता या फिक्र करते रहें। ये नादानी में शुरू और चिंता में समाप्त होती है। चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, पर एक दिन तो इसका अंत होगा ही, और बीच का समय भी जैसे तैसे गुजर ही जाता है। जिंदगी की परेशानियों को हंसकर भुला देना ही बुद्धिमानी है। 37. एक कम उम्र की महिला जिसके पति की हाल ही में मृत्यु हुई थी, दुख में इतनी डूबी हुई थी कि उसने महाराज जी से विनती की कि उसे उठा लें। उसने कहा, महाराज जी मैं मरना चाहती हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, आपकी मौत क्या आपके उन कर्मों को खत्म कर देगी जिनकी वजह से ये दुख आया है? नहीं, आपके वे कर्म दूसरे जन्म में भी साथ जाएंगे। फिर कर्मों के इस कर्ज को अभी क्यों ना चुका दिया जाए, बजाय इसके कि कर्मों के भारी कर्ज में एक और पाप, सबसे बड़ा पाप आत्महत्या जोड़ा जाए। 38. मेरे दोस्तों, इस मार्ग पर कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है। जब तक हम यथाशक्ति मेहनत और कोशिश नहीं करते, वो द्वार नहीं खुल सकता। 39. हमारी प्रार्थनाएं और अरदासें व्यर्थ हैं जब तक कि हम अपनी ओर से द्वार खोलने की पूरी कोशिश के द्वारा उन्हें सबल नहीं बनाते। सद्गुरु जानते हैं कि नाम के लिए हमारी इच्छा और प्यास दिखावटी है। हमारी प्रार्थनाएं निष्कपट और सच्ची नहीं हैं। हमारा मन अभी भी दुनिया और उसके पदार्थों की कामनाओं से भरा हुआ है। वो वासनाओं और लोभ में डूबा हुआ है। सांसारिक मान बढ़ाई और यश के पीछे भाग रहा है। वो हरदम गुरूर और अकड़ में रहता है। याद रखिए, सदगुरु को धोखा नहीं दिया जा सकता। जब तक उससे मिलाप की तड़प तीव्र और सच्ची नहीं है, वो खामोश रहता है और ध्यान नहीं देता। 40. जब तक बच्चा गुड़ियों और खिलौनों से खेलता रहता है, माँ भी उसके बारे में फिक्र नहीं करती। पर जिस समय वो अपने खिलौनों को फेंक देता है और माँ के सिवाय और कुछ नहीं चाहता, तो माँ भी उसकी चीख पुकार को अनसुना नहीं कर सकती। उसे अपनी गोद में लेने के लिए वो दौड़ी आती है। इसी प्रकार जब तक हम औरों के आसरे रहते हैं, परमात्मा हमें वैसे ही रहने देता है। पर बार बार की चोट और निराशा के बाद जब हम उसे अपना एकमात्र आधार मानकर अपने आप को बिल्कुल उसके आश्रय छोड़ देते हैं तो वो उसी क्षण हमारी मदद के लिए आ जाता है। 41. सिमरन करने में ऐसी कौन सी मुसीबत है? क्या इसका कोई दाम देना पड़ता है? क्या आपको अपने सिर पर कोई भार या बोझ लादना पड़ता है? या क्या आपको बंदूक की गोली या तोप के गोलों का सामना करना पड़ता है? इसमें तकलीफ क्या है? बस आराम से किसी कुर्सी पर बैठकर मन से नामों को दोहराते रहिए। एक आवाज, महाराज जी मन भटकता रहता है। महाराज जी ने कहा, ठीक है, उसे भटकने दीजिए, आप अपना सिमरन करते रहिए। परमात्मा की याद में बिताया हुआ हर एक क्षण आपके हिसाब में जमा होता है। दिन में दो बार सार्वचन या संतमत की किसी और पुस्तक में से 2-3 शब्द पढ़िए, इससे काफी मदद मिलेगी। 42. भक्त के सब कार्य दुनियादारों के तरीकों से उल्टे होते हैं। प्रीतम को देखने के लिए वे अपनी आंखें मूंद लेते हैं। लोग धन की कामना करते हैं, उन्हें गरीबी प्यारी होती है। लोग दुनिया के सुखों के पीछे भागते हैं, वे दुख की चाह करते हैं। लोग जिंदगी के पुजारी हैं, उन्हें मौत से प्यार होता है। 43. हर एक मंदिर और मस्जिद के प्रवेश द्वार पर लिख दो कि परमात्मा मजहबों और संप्रदायों से दूर मनुष्य के अंतर में रहता है। 44. अंतर में सद्गुरु का नूरी स्वरूप तभी प्रकट होगा जब संसार की सभी कामनाओं को वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। 45. एक यूरोपियन सत्संगी को उत्तर देते हुए महाराज जी ने फरमाया कि संत सांसारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चमत्कार दिखाने या आत्मिक शक्ति का प्रयोग करने का समर्थन नहीं करते। एक पहुंचे हुए सत्संगी के लिए बीमारी को दूर करना, अंधे को दृष्टि देना या मुर्दे को जीवित कर देना कठिन नहीं है, पर मालिक के निर्णय और फरमान के खिलाफ ऐसा क्यों किया जाए? संतों को अपने अहंकार की पूर्ति नहीं करनी है, ना उन्हें कोई मतलब साधना है। वे परमात्मा की हुकूमत चाहते हैं, अपनी नहीं। आप सबको गुरु हरगोबिंद जी के 9 वर्षीय पुत्र बाबा अटल का हाल मालूम है। जब बाबा अटल अपने दोस्त मोहन के घर उससे अपने पिछले दिन के खेल की बारी लेने गए तो उन्होंने मोहन को जमीन पर लेटे हुए और उसके माता पिता तथा संबंधियों को उसके चारों ओर बैठकर रोते हुए देखा। लोगों ने उन्हें बताया कि मोहन मर गया है। बाबा अटल ने कहा, नहीं, वो मरा नहीं है, वो खेल में मेरी बारी ना देने के लिए मरने का बहाना कर रहा है। अटल ने उसका हाथ पकड़ा और उठाकर खेल के मैदान में ले आए। जब गुरु हरगोबिंद साहब ने यह सुना, उन्होंने पुत्र को अपने सामने बुलाया और फरमाया, बेटा, अब ये चमत्कार करने के बदले या तो तुम्हें ये संसार छोड़ना होगा या मुझे जाना होगा। बाबा अटल ने अपनी नादानी का मोल चुकाना मंजूर किया और उसी समय वहीं जमीन पर लेटकर चोला छोड़ दिया। आपने अमृतसर में हरमिंदर साहब के पास उनकी संगमरमर की समाधि देखी होगी। हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि ये रिद्धियां सिद्धियां सत्संगी के मार्ग में वेश्याओं के समान हैं जो उसकी संपूर्ण कमाई को लूट लेने की कोशिश करती हैं। उनसे हमेशा सावधान रहो। 46. शेक्सपियर का कथन है, सच्चे प्रेम का रास्ता कभी समतल नहीं होता। प्यार जितना सच्चा होगा, रास्ता उतना ही कठिन होगा। यही बात परमात्मा के प्रेम के लिए भी सही है। जितना अधिक आप उसे प्यार करते हैं, उतना ही अधिक कठिनाइयां और आजमाइशें वो आपके रास्ते में खड़ी कर देता है। सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है। पलटू साहब कहते हैं, प्रेम का मार्ग आसान नहीं है, क्या तुम अपना सर अपने हाथों से काटने को तैयार हो? अगर नहीं तो प्रेम के सपने मत देखो। ये कोई शक्कर की डली नहीं जिसे तुम खा सको। प्रेमी तो दिन रात सूली पर लटका रहता है, वो जीते जी मर जाता है और अपने शरीर व जिंदगी की सब इच्छाओं को त्याग देता है। उसके शरीर में एक बूंद भी रक्त बाकी नहीं रहता, ना वो रोता है और ना कभी उसके दिल से कोई आह ही निकलती है। हर तरह की मान बढ़ाई को छोड़कर वो अपने आप को भोजन और निद्रा से भी दूर रखता है। वे लोग कितने मूर्ख हैं जो प्रेम को अपनी मौसी के घर की दावत समझकर प्रेमी बनते हैं। 47. हम अपने अनमोल मनुष्य जन्म को किस प्रकार विषय भोगों में बर्बाद कर देते हैं और इनकी देन क्या होती है? सिर्फ कष्ट, रोग, पीड़ा और दुख। असल में परमात्मा ने कृपा करके हमें मनुष्य जन्म की जो बहुमूल्य सौगात दी है उसकी कीमत की समझ शायद हमें है ही नहीं। निचले दर्जे के करोड़ों जन्मों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। कीड़ों, पक्षियों और पशुओं के जन्म में भी हमें पिता, माता, पत्नी और बच्चे मिले थे। प्रेम, घृणा, काम, भूख और लोभ का अनुभव हमने तब भी किया था। फिर मनुष्य की श्रेष्ठता किस बात में है? दया में दाता यानी परमात्मा द्वारा हमें बुद्धि देने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम इसी जन्म में अपने आप को पहचानें, मालिक की तलाश करें और उसे प्राप्त कर लें। अगर हम ये न कर सके तो पशुओं से अच्छे नहीं हैं। अतएव हमें चाहिए कि परमात्मा को पा सकने के अवसर का पूरा फायदा उठाएं। 48. बुराई का रुख नीचे की ओर होता है। सिर्फ एक बुरा विचार भी मनुष्य को ब्रह्मांड की दिव्य ऊंचाइयों से नरक के निचले खंड में ले आता है। जैसे बर्फ की चोटी से फिसलकर मनुष्य सीधा नीचे आता है, उसी प्रकार एक वासनापूर्ण भाव भक्त को नीचे खींच लाता है। काम वासना और परमात्मा का प्रेम एक दूसरे के विरोधी हैं। किसी भी हृदय में दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहां काम वासना है वहां मालिक का प्यार नहीं है, और जहां मालिक का प्यार आ बसता है वहां से काम गायब हो जाता है। 49. कष्ट, पीड़ा, दुख और रोग हमारी खूब सफाई करते हैं। वे हमें बेहतर इंसान बनाते हैं और परमात्मा के नजदीक ले आते हैं। भगवान कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं, मैं अपने सबसे प्यारे भक्तों को तीन दुर्लभ उपहार या सौगातें देता हूं। वे हैं गरीबी, बीमारी और निरादर। ईसा मसीह ने सच ही कहा है कि किसी अमीर आदमी के परमात्मा के देश में प्रवेश पाने से ऊंट का सुई के नाके यानी छेद में से निकल जाना कहीं आसान है। भगवान कृष्ण ने शरीर के प्यार, शेखी, घमंड और सांसारिक पदार्थों के मोह को परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में रोड़े बतलाया है। वचन हुजूर महाराज चरण सिंह जी। 1. संतमत हमें कायर और बुजदिल नहीं बनाता। हमें दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, पर दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल से बचकर रहना है। 2. संतमत भक्ति का मार्ग है, इसमें केवल प्रेम की ही महिमा है। 3. महात्मा किसी कौम, किसी मजहब, किसी मुल्क या किसी वक्त में क्यों ना आए हों, हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। 4. महात्मा ना तो कौमों, मजहबों, मुल्कों की नींव रखने के लिए आते हैं, ना समाज सुधारक बनकर आते हैं, और ना ही वे इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं। वे तो हमारे ख्याल को रचना में से निकालकर, हमें मालिक की भक्ति में लगाकर, हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद करने के लिए आते हैं। 5. दुनिया में कभी कोई महात्मा अपने सेवकों के हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए नहीं आते, ना ही महात्मा कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े करने के लिए आते हैं। वे केवल हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्यार पैदा करने के लिए, हमें मालिक की भक्ति का साधन समझाने के लिए आते हैं। 6. महात्मा तो सारी दुनिया के लिए आते हैं और सारी दुनिया को एक ही शब्द या नाम का उपदेश देते हैं। 7. जिन महात्माओं की शिक्षा कुल आलम के लिए है, सारी दुनिया के लिए है, अगर कोई उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों, प्रांतों, जिलों, जातियों, धर्मों, देशों के अंदर बंद करने की कोशिश करता है, इससे अधिक वो उस मालिक के भक्तों और प्यारों से और क्या बेइंसाफी कर सकता है। 8. गुरुमुखों के सत्संग में जाने में फायदा ही फायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता। एक अंधा फूलों के बाग में चला जाता है, अगर वो फूलों की खूबसूरती नहीं देख सकता, फूलों की खुशबू तो जरूर ले ही जाएगा। एक पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, अगर वो घुलता नहीं तो कम से कम सूरज की तपिश से तो बचा रहता है। अगर हम गुरुमुखों के सत्संग में जाकर नाम की कमाई नहीं भी करते तो भी बुरे कर्मों से तो बचे रहते हैं। 9. जिन जीवों को परमात्मा इस देह की कैद से आजाद कराना चाहता है, सबसे पहले उनको साधु संत महात्माओं की संगति प्राप्त होती है। 10. साधु संत महात्माओं का सत्संग इसलिए होता है कि मन सीधा होकर मालिक की भक्ति की ओर चलता रहे। जब मन को ठोकर लगती रहे, हमें कोई समझाता रहे, तब कहीं हमारा ख्याल थोड़ा बहुत परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। मन को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दो, मन उसी तरह हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देगा। 11. महात्मा सत्संग के जरिए ही हमें दुनिया के मोह और प्यार से छुड़ाते हैं और हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क और प्यार पैदा करते हैं। 12. सत्संग या संतमत के क्या नियम हैं? शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, नेक चलन रखना और सिमरन के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना। 13. सिमरन करने की तो हमें इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि अगर हम एक दूसरे से बातें भी करते हों तो भी सिमरन हमारे अंदर अपने आप जारी रहना चाहिए। 14. गुरुमुखों से नाम का भेद लेकर न केवल अपने आप को सत्संग के उसूलों का पाबंद रखना चाहिए, बल्कि चलते फिरते उठते बैठते अपने ख्याल को शब्द या नाम से जोड़कर रखना चाहिए, ताकि आगे के लिए बुरे कर्मों से पापों से भी बचे रहें और नाम की कमाई द्वारा पिछले कर्मों को नष्ट करके परमात्मा से मिलाप भी कर लें। 15. ये सिमरन ही है जो हमारे ख्याल को विषय विकारों, शराबों कबाबों, दुनिया के धंधों, दुनिया की शक्लों में से निकालकर शब्द और नाम के साथ जोड़ता है। 16. हम दुनिया के जीव जहर के ऐसे गहरे कुएं में पड़े हुए हैं जिसमें से हमारा निकलना बहुत ही मुश्किल है। गुरुमुख हमें शब्द की डोर द्वारा इस कुएं में से निकाल कर बाहर ले आते हैं। 17. इच्छाएं तृष्णाएं ना तो आज तक किसी की पूरी हुई हैं और ना हो ही सकती हैं। 18. जितनी हमारी इच्छाएं हैं उतने ही हमारे दुख हैं। 19. हमारा हृदय दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए तड़पता है, मिलना हम मालिक से चाहते हैं, ये दोनों बातें एक साथ किस प्रकार हो सकती हैं? 20. हमें मालिक की भक्ति मालिक से मिलने के लिए करनी है, रचना की किसी इच्छा या तृष्णा की पूर्ति के लिए नहीं। 21. महात्माओं ने ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र लिखे हैं कि हम उन पर अमल करें, न कि उनकी भक्ति और पूजा करनी शुरू कर दें। मुक्ति उनको पढ़ने में नहीं, जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने में है। 22. गुरमत क्या है? अपने ख्याल को आंखों के पीछे समेटकर शब्द के साथ जोड़ना गुरमत है। इसके विपरीत मन के अधीन होकर कर्म करना मनमत है। 23. मालिक के भक्त और प्यारे शब्द या नाम में से आते हैं, शब्द और नाम का ही प्रचार करते हैं, शब्द और नाम में ही जाकर समा जाते हैं। 24. जब मालिक हम पर दया मेहर और बख्शिश करता है, गुरुमुखों के जरिए करता है, संत महात्माओं के जरिए करता है, और जब भी गुरुमुख हमें मालिक से मिलने के काबिल बनाते हैं, हमसे शब्द या नाम की कमाई करवा कर बनाते हैं। 25. परमात्मा ने खुद ये विधान बनाया है, ये नियम बनाया है कि बिना नाम के मुक्ति नहीं मिलती और बिना सद्गुरु के नाम की समझ नहीं आती। 26. सेवक का धर्म है जो कुछ मालिक देता है उसे गुरु का सद्गुरु का समझकर इस्तेमाल करे, लेकिन गुरुमुखों का भी उसूल है कि सेवक की सुई तक न लें, अगर लेते हैं तो वे गुरुमुख नहीं हैं। 27. सतगुरु का प्रेम ही परमात्मा का प्रेम है। 28. सतगुरु की सेवा का मतलब है उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द के साथ ख्याल जोड़ना, नाम के साथ ख्याल जोड़ना। 29. संत महात्मा परमात्मा की भेजी हुई सरकारें होती हैं, वे उसके हुक्म से ही आती हैं, दुनिया में आकर उसके हुक्म या नाम का ही प्रचार करती हैं और हमें साथ लेकर उस हुक्म शब्द या नाम में ही समा जाती हैं। 30. संत महात्मा जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं उसे अपना ही रूप बना लेते हैं। 31. संत महात्मा हमेशा जिंदगी की मिसाल बनकर दिखाते हैं कि किस तरह हमें हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करनी है। 32. जब हम सारी दुनिया में से मोह और प्यार को निकालकर सतगुरु से प्यार करते हैं, जब दुनिया को छोड़कर उनको अपना बना लेते हैं, हम उनके बन जाते हैं, तब हमें अपने कर्मों की फिक्र नहीं होती, सतगुरु को हमारे कर्मों की फिक्र होती है। 33. गुरुमुख हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, वे हमें धुरधाम पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं। 34. जिस प्रभु ने हमें पैदा किया है उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए रखकर उसका भेद गुरुमुखों संत महात्माओं को सौंप दिया है। 35. अच्छी तरह मन में धार लो कि गुरुमुखों के बिना हम कभी भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। 36. सतगुरु भक्ति मुक्ति का दरवाजा है। 37. सतगुरु भक्ति नाम भक्ति की पहली सीढ़ी है। 38. इंसान का उस्ताद इंसान ही हो सकता है, या तो हमें गुरुमुखों की जरूरत ही नहीं है, अगर है तो वे देहधारी ही हो सकते हैं। 39. वही समय अच्छा है, वही घड़ी शुभ है, वही मुहूर्त अच्छा है, वही वेला अच्छा है, जब हमारा मन परमात्मा की भक्ति परमात्मा के प्यार की ओर जाता है। 40. जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किताब होना है, वहां ना हमारे शरीर को पहुंचना है, ना हमारी जाति पांति को पहुंचना है। 41. अगर परमात्मा की कोई कौम और मजहब नहीं है, परमात्मा की कोई जाति पांति नहीं है, तो आत्मा की कौन सी कौम, कौन सा मजहब हो सकता है, आत्मा की कौन सी जाति पांति हो सकती है। 42. अगर कोई ऊंचे से ऊंचा दान है, वो शब्द का दान है, नाम का दान है। 43. अगर हम अपनी मान बढ़ाई के लिए दान पुण्य करते हैं, उस दान का कभी कोई रूहानी फायदा नहीं हो सकता। 44. दान वही है जो हम किसी को दे देते हैं और उसके बदले उससे किसी चीज की आशा नहीं रखते। 45. जरा विचार करें, हमारे पिछले जन्मों के यार दोस्त, बहन भाई, पत्नी, बच्चे कहाँ हैं? अगर आज उनको भूल चुके हैं तो जिनको आज अपना अपना कह रहे हैं उन्हें कहाँ याद रख सकेंगे। 46. हम सारी उम्र पराये गधे बने रहते हैं, सारी उम्र लोगों के लिए ही पराया बोझ ढोते रहते हैं। जो हमारा असली काम है वो मालिक की भक्ति है, नाम की कमाई है, उसके बारे में हम सारी जिंदगी सोचने की कोशिश तक नहीं करते। 47. जिनको हम अपना अपना कह रहे हैं उनका संबंध सिर्फ रुपए पैसे के लिए है, गरज या स्वार्थ के लिए है। अगर बाप एक बेटे को 2 बीघे जमीन कम दे दे तो बेटा बाप की जान का दुश्मन बन जाता है। 48. दुनिया के पदार्थों में न कभी किसी को सुख मिला है, ना ही कभी मिल सकता है। असली सुख कब मिलता है? जब हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर लेती है। 49. अगर दुनिया की चीजें किसी का साथ देने वाली होती तो वे कभी हमारे हिस्से में ना आती, लोग उन्हें पहले ही बुक करके, पार्सल करके आगे भेज देते। 50. ये तन का प्यार है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों का मोह है, जो हमें बार बार 84 के बंधनों में फंसाता है। 51. अगर महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान की धन दौलत ना जा सकी तो हमारे साथ दुनिया की कौन सी धन दौलत जा सकेगी। 52. उस मालिक के सिवाय जो कुछ भी हम मालिक से मांगने में लगे हुए हैं
उसे नाश हो जाना है, फना हो जाना है, इसलिए हमें मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए। 53. ये जो भी कुटुंब है, रिश्तेदार हैं, माता पिता, बहन भाई, यार दोस्त हैं, इनसे हमारा सिर्फ लेन देन का संबंध है, गरज या स्वार्थ का प्यार है। 54. अगर दुनिया में कोई अपने हैं तो वे गुरमुख हैं, मालिक के भक्त या प्यारे हैं। वे हमें इस रचना की असलियत समझाते हैं, मन को वश में करने का तरीका बताते हैं, हमें हमारे परमात्मा से मिलाते हैं। 55. मालिक से तो हम दूर होते जा रहे हैं, रचना के हम नजदीक होते जा रहे हैं। जितना रचना में मन फैलाते जाएंगे उतने ही दुखी होते जाएंगे, जितना रचना में से मन निकालते जाएंगे उतने ही सुखी होते जाएंगे। 56. संसार के मोह में फंसकर हम मौत को भूले बैठे हैं। हम समझते हैं कि शायद मौत दूसरे लोगों के लिए है, हमारे लिए ऐशो इशरत है, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े हैं। 57. अगर देह में बैठकर शांति से चार दिन काटना चाहते हो और वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो एक ही तरीका है, वो सिर्फ शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। 58. सच्चा नाम शरीर के बाहर और आंखों के नीचे नहीं मिलता। 59. नाम की कमाई करने के लिए हमेशा तीन बातों को याद रखना चाहिए। एक, गफलत या आलस नहीं करना। दूसरे, दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी है। और तीसरे, नाम की कमाई को अपने अंदर हजम करना है। 60. सिवाय शब्द या नाम के अभ्यास के अलावा दुनिया में कोई भी चीज हमारी भक्ति के, हमारे प्यार के योग्य नहीं है। 61. भजन सिमरन ही हमारे अंदर सतगुरु और परमात्मा का सच्चा प्रेम पैदा करता है। 62. चारों युगों में केवल शब्द या नाम ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन रहा है। 63. जब हम नाम की कमाई करनी शुरू कर देते हैं तो मन में से इच्छाएं, तृष्णाएं, पिछले संस्कारों का भय, मौत का डर सब निकल जाते हैं। 64. सुरत शब्द के अभ्यास के द्वारा आत्मा मन को वश में कर लेती है, मन इंद्रियों और भोगों को वश में कर लेता है, जिससे हमारा तन निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। 65. अगर आप कलयुग में जिंदगी के चार दिन शांति से बिताना चाहते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो केवल नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। 66. जो घड़ी, दो घड़ी, घंटा, दो घंटा मालिक की भक्ति करेंगे, उसकी याद में बैठेंगे, नाम की कमाई करेंगे, वही हमारे लेखे में लिखी जाएगी, उसी का हमें लाभ मिलेगा। 67. रोज मालिक की भक्ति करनी चाहिए, मन के साथ जबरदस्ती भी करनी पड़े तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज अंत समय हमारे साथ जाएगी, संसार की बाकी सब चीजें यहीं रह जाएंगी। 68. जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, जो भक्ति हमें हमारे ठिकाने पहुंचाएगी, वो सिर्फ शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। 69. उस मालिक की बख्शिश को संभालने के लिए हमें अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना है, अपने हाजमे को इतना तेज बनाना है कि उसकी खुशबू भी बाहर ना निकले, उसकी डकार तक भी कभी बाहर ना निकले। 70. सब संत महात्माओं की शिक्षा का यही सार या निचोड़ है कि जो भी रूहानी लाभ किसी को मिल सकता है, केवल सुरत शब्द या नाम की कमाई द्वारा ही मिल सकता है। 71. सुरत शब्द की सेवा सबसे ऊंची और पवित्र सेवा है। 72. संत महात्मा ये नहीं कहते कि नाम की कमाई करने के लिए दुनिया की जिम्मेदारियां छोड़ दो, या अपना बोझ समाज पर डाल दो, या जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ। हक हलाल की कमाई करते हुए दुनिया में रहना है,
सूरमा और बहादुर बनकर रहना है। 73. नाम की कमाई करने वाले के नजदीक ना यमदूत आते हैं, ना धर्मराय आता है, सतगुरु आते हैं और सीधे सचखंड ले जाते हैं। 74. बहुत अच्छा भाग्य हो, बहुत ही श्रेष्ठ कर्म हो, बहुत ही परमात्मा की हम पर दया मेहर बख्शिश हो, तब जाकर हम गुरुमुखों के जरिए नाम की कमाई में लगकर आत्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। 75. जो लोग मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर नाम या शब्द की कमाई में लगे हुए हैं, वे कोई साधारण जीव नहीं हैं, वे बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कर्मों वाले हैं। 76. दुनिया की कोई दौलत, दुनिया का कोई खजाना कभी नाम की कीमत अदा नहीं कर सकता। 77. जिन्हें हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वे फिर कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। नाम की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है कि उस लज्जत को हासिल करके हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषयों, वकारों, शराबों, कबाबों को छोड़ देता है। 78. अगर कोई इंसान, कौम या मजहब, किसी इंसान, कौम या मजहब की निंदा करता है, तो उस इंसान, कौम या मजहब के अंदर अभी मालिक से मिलने का प्यार ही पैदा नहीं हुआ। 79. मालिक के भक्तों और प्यारों से हम सिर्फ नम्रता और प्रेम के जरिए ही फायदा उठा सकते हैं। 80. मालिक के भक्त और प्यारे तो हमेशा नम्रता, प्रेम और प्यार के बंधे होते हैं। 81. मन में जितनी नम्रता या दीनता होती है, हमारा ख्याल उतना ही उस मालिक की भक्ति की ओर जाता है। 82. बड़ी ओछी बात है, बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अकल के अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करता, तो हम उसे बुरा भला कहने लगें या डंडे तलवारें लेके डराने धमकाने लग जाएं। हमें उसे प्यार से समझाना है कि देख भाई, हमें इस रास्ते पर चलकर ये फायदा हुआ है, अगर तेरी समझ में आता है तो भी इस रास्ते पर चलकर फायदा प्राप्त कर सकता है। 83. जब तक हम हक हलाल की कमाई नहीं करते, हमारी बंदगी, हमारी भक्ति में बरकत नहीं हो सकती। 84. काम और क्रोध दो ऐसी खतरनाक ताकतें हैं जिनके अधीन होकर हम ऐसे बुरे खोटे पाप और कुकर्म कर बैठते हैं जिनका नतीजा भुगतने के लिए हम जन्मों जन्मों के चक्कर में पड़ जाते हैं। 85. विषय विकारों में से ख्याल निकालना, शराबों कबाबों में से मन को मोड़ना, बेटे बेटियों के प्यार में से मन को निकालना और उसे सतगुरु की ओर ले जाना कोई मामूली बात नहीं, बड़े सूरमाओं का, बहादुरों का काम है। 86. जब तक हम अपने ख्याल को परमात्मा के चरणों से नहीं जोड़ते, तब तक हमें परमात्मा का क्या फायदा है। 87. जो गुरुमुख हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे तो देह और शरीर के अंदर जाकर परमात्मा की खोज करते हैं, बाकी लोग वहमों भ्रमों में फंसकर अपने कीमती वक्त को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। 88. जो लोग देह और शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। 89. अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ठाकुर द्वारा है, गिरजा है, तो वो सिर्फ हमारा शरीर है। 90. हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरिमंदिर है। जब भी हमें मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा, केवल अपने शरीर में होगा, अपनी देह में होगा। 91. अगर हमारे अंदर सचमुच ये बात बैठ जाए कि मालिक हर जगह मौजूद है, वो सबके अंदर बैठा हुआ है और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब कुछ देख रहा है, तो हमसे कोई बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। 92. सब संत महात्मा यही कहते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर है। कभी किसी महात्मा ने ये नहीं कहा कि परमात्मा कहीं बाहर मिलेगा। 93. सबको पता है कि परमात्मा एक है, वो एक परमात्मा हम सब के अंदर बैठा हुआ है। ये भी पता है कि शरीर के अंदर ही परमात्मा मिलेगा। फिर किसकी समझ में आता है कि हिंदुओं के अंदर तो मालिक ने अपने मिलने का कोई और रास्ता रखा है, सिखों और ईसाइयों के अंदर कोई और रास्ता रखा है। 94, परमात्मा हम पर दया मेहर करे तभी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जा सकता है। 95, अगर हम मालिक से मालिक को मांगते हैं तो कोई कारण नहीं कि मालिक हम पर दया ना करे। 96, जिसे इस रचना की किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मालिक की जरूरत है, उससे बड़ा और कौन सा बादशाह हो सकता है जो दिन रात हाथ जोड़कर मालिक के आगे प्रार्थनाएं करने में लगे हुए हैं, उनसे बड़ा भिखारी और कौन हो सकता है। 97, जब तक हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा नहीं होता, विरह और तड़प पैदा नहीं होती, हम अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। 98, जिनका परमात्मा से प्यार होता है वे परमात्मा की खलकत से, परमात्मा की मखलूक यानी रचना से भी प्यार करते हैं। 99, बाहर का पानी कितना भी साफ क्यों ना हो, वो हमारे शरीर की मैल उतार देगा, लेकिन जो पापों की कर्मों की मैल है वो पानी द्वारा धोने से किस तरह साफ हो सकती है, वो तो शब्द की कमाई से दूर होगी, नाम की कमाई से दूर होगी। 100, आत्मा और परमात्मा के बीच अगर कोई रुकावट या पर्दा है तो वो केवल हमारे मन की रुकावट है, वो केवल हमारे मन का पर्दा है। जब तक हम मन की रुकावट को रास्ते से दूर नहीं करते, हम कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। 101, जब तक हम मन को वश में नहीं करते, हम गुरुमुख नहीं बन सकते, परमात्मा से नहीं मिल सकते। 102, वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो। शब्द सचखंड से आता है। जब हम अपने ख्याल को उसके साथ जोड़ देते हैं तो हम भी मन और माया के दायरे के पार चले जाते हैं। 103, मन तो एक ही है, चाहे हम उसे दुनिया के मोह और प्यार में फंसा लें, चाहे मालिक की भक्ति और प्यार में लगा लें। 104, मन को वश में करने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, गुरु भक्ति और नाम भक्ति। 105, जब तक हम मन को दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं देंगे, ये दुनिया के मोह और प्यार को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। 106, कोई भी जीव अपनी बुद्धि, चतुराई और यत्न द्वारा इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। 107, जो सज्जन यहां शब्द और नाम की कमाई करने लग जाते हैं उनका 84 से छुटकारा हो जाता है, बाकी सबका यही हिसाब किताब चलता रहता है। 108, इस बात को अच्छी तरह मन में बिठा लो कि शब्द और नाम की कमाई के बिना किसी भी हालत में देह के बंधनों से किसी का छुटकारा नहीं हो सकता। 109, जितने भी हमारे मजहब हैं उनके रस्मों रिवाज जरूर अलग अलग हैं, क्योंकि इंसान के खुद पैदा किए हुए हैं, लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, सार वस्तु है, रूहानियत की बुनियाद है, वो हर मजहब की तह में एक ही है। 110, रूहानियत की बुनियाद प्रेम है, डर नहीं। 111, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, सब अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। 112, अगर हम सच्चे दिल से मालिक की भक्ति करना चाहते हैं तो हमें दुनिया के तानों और शिकायतों की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। 113, अगर लोकलाज से डरकर मालिक की भक्ति नहीं करते तो मतलब साफ है कि अभी हमारे मन में मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा ही नहीं हुआ। हम मालिक को छोटा समझे बैठे हैं और दुनिया को बड़ा समझे बैठे हैं। 114, सच्चे मार्ग और सच्चे मार्गदर्शक की तलाश में सारी उम्र भी लग जाए तो भी इस समय को व्यर्थ बीता हुआ नहीं समझना चाहिए। 115, मंजिल पर अभ्यास पहुंचाएगा, विश्वास नहीं, परंतु विश्वास अभ्यास करवाएगा। बिना विश्वास के अभ्यास में सफलता संभव नहीं, 116। बुद्धि पर आधारित प्रेम भी ठीक है, भावना पर आधारित प्रेम भी ठीक है, परंतु कोई भी प्रेम उस प्रेम का मुकाबला नहीं कर सकता जो अनुभव से प्राप्त होता है। इस अनुभव के लिए भजन सिमरन जरूरी है। 117। जब तक हम मन को वश में नहीं करते, तब तक हमारा मन अभ्यास में न बैठने के बहाने ढूंढता ही रहेगा। हम अपने बाकी सारे काम समय पर करते हैं, हमारे ऑफिस जाने, खाना खाने, कॉफी पीने, सैर करने और सोने का निश्चित समय है। फिर अभ्यास के लिए भी निश्चित समय क्यों ना हो। रूहानी अभ्यास को तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। 118। सच्चे रूहानी प्यार का कभी दिखावा नहीं किया जाता, ये खामोशी में ही पनपता और बढ़ता है। 119। प्रलोभनों से बचने के लिए सबसे बड़ा कवच भजन सिमरन है। 120। अगर आप 2-3 घंटे भजन करें और फिर उसको बिल्कुल भुलाकर लोगों का दिल दुखाएं, उनको गालियां दें, उनसे चालाकी करने की कोशिश करें, धोखा देकर उनका धन हथिया लें, तो ऐसे भजन का क्या लाभ। भजन का असर आपके हर काम में झलकना चाहिए। 121। ना अच्छे कर्मों का प्रभाव हमेशा रहता है और ना ही बुरे कर्मों का। हमें अपने आप को कर्मों के प्रभाव के अनुसार बदलना चाहिए। हम तभी खुश रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे घर में कोई दुख की घटना ना घटे, तो ये संभव नहीं। जिसे मरना है वो तो मरेगा ही। अगर अडोल रहकर हालात को स्वीकार कर लेंगे तो सुखी रहेंगे। 122। अगर हम बदलते हालात में मन को स्थिर रखें, शांत रखें, तो हमेशा खुश रह सकेंगे। 123। त्याग का मतलब ये नहीं कि हम अपने बाल बच्चों और परिवार को छोड़कर जंगलों में भाग जाएं। त्याग का मतलब है संसार में रहते हुए संसार में लिप्त न होना। 124। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। आत्मा परमात्मा की अंश है, उसका अपने मूल या असल की ओर कुदरती खिंचाव है। अगर हम सुई पर कोई भारी वजन रख दें तो वो चुंबक की ओर नहीं जा सकती। आत्मा में परमात्मा की ओर कुदरती तौर से कशिश है, लेकिन उस पर कर्मों का भारी बोझ है, इसलिए वो इस प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती, परमात्मा की ओर नहीं जा सकती। 125। प्रेम में प्रियतम की प्रसन्नता मुख्य होती है, अपनी नहीं। सच्चे प्रेम में प्रियतम की प्रसन्नता को ही प्रेमी अपनी प्रसन्नता समझता है। 126। लोग परमात्मा को पाने के बजाय परमात्मा से कुछ पाने के लिए उसकी पूजा करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो परमात्मा के लिए परमात्मा से प्यार करते हैं। 127। जब हम सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तब परमात्मा भी हमारी सहायता करता है तथा कुदरत हमारे अनुकूल वातावरण और हालात बना देती है। परमात्मा की दया मेहर का हाथ सदा हमारे सिर पर होता है, चाहे हमें इसका पता हो या ना हो। 128। मालिक की दया मेहर हमेशा मौजूद है, पर हमें खुद अपने आप को उसकी दया के योग्य बनाना है। यदि कोई बर्तन ही उल्टा पड़ा हो तो चाहे कितनी ही जोर की वर्षा क्यों ना हो, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। अगर हम बर्तन को सीधा कर दें तो वो पहली नहीं तो दूसरी तीसरी बारिश से भर जाएगा। 129। जितना अधिक प्यार हम मालिक के जीवों से करते हैं, उतना ही अधिक प्यार वो हमें बख्शता है और उतना ही अधिक हम उसके निकट हो जाते हैं। 130। हमें बुद्धि का उपयोग मालिक की सृष्टि को नष्ट करने, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने, एक दूसरे का नाश करने या इंद्रियों का गुलाम बनने के लिए नहीं, मालिक की खोज के लिए करना चाहिए, और इसके लिए ही हमें बुद्धि दी गई है। 131। प्रार्थना के लिए शब्दों या भाषा की जरूरत नहीं। प्रार्थना तो प्यार की भाषा है जो हमारे हृदय से निकलकर प्रभु तक जाती है। प्रार्थना के समय हमारे और मालिक के बीच में कोई दूसरा नहीं होता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो संसार को भूल जाते हैं, मालिक रहता है और आप होते हैं, यही सच्ची प्रार्थना है। 132। परमात्मा से अपनी इच्छाओं तथा तृष्णाओं को पूरा करने की मांग करना सच्ची प्रार्थना नहीं है, ये तो वापस से संसार सागर में धकेल दिए जाने की मांग करना है। 133 भजन सिमरन ही सच्ची प्रार्थना है। 134 दोष और कमजोरियां हम सब में हैं, अगर हम पूर्ण होते तो इस रचना में ना होते। अपने दोषों की जानकारी भी एक वरदान है। उचित तो यह है कि उनका दुखड़ा रोने के बजाय उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए। 135 हमारे जन्मदिन हमें याद दिलाते हैं कि वक्त गुजरता जा रहा है और कितना अनमोल समय बीत चुका है। अगर उसे भजन सिमरन में लगाया गया है तो उसका उचित उपयोग हुआ है, वरना वो व्यर्थ बर्बाद हुआ है। 136 इंसान के जामे को हासिल करने का मकसद तभी पूरा हो सकता है जब हम उठते बैठते चलते फिरते शब्द और नाम की कमाई में लगे रहें। 137 हमारा देह में आने का असली मकसद मुक्ति हासिल करना है, 84 के जेल खाने से हमेशा के लिए आजाद होना है। 138 ऐसी कोई भी बुरी आदत या कमजोरी नहीं है जिसे मनुष्य जीत ना सके, आवश्यकता केवल लगन, दृढ़ निश्चय और सही मनोवृत्ति की है। 139 दुनिया बहुत दुखी और परेशान है, मन के रोग शरीर के रोगों से भी बहुत बढ़ गए हैं। इन सब का केवल एक ही इलाज है और वो है नाम का अभ्यास। 140 चिंता करने से किसी को न कभी मदद मिली है और ना ही मिल सकेगी, बल्कि ये हमारी इच्छा शक्ति तथा संकटों का सामना करने के सामर्थ्य को कमजोर करती है। 141 ये देश हमारा देश नहीं, हम पराए देश में आकर भटकते फिर रहे हैं। जिन धंधों में दिन रात भटकते और तड़पते रहते हैं, ये असल में हमारे अपने धंधे नहीं हैं। हमारा असली धंधा वो है जिसके लिए परमात्मा ने इंसान का जामा हमें दिया है। अगर कोई इंसान का जामा हासिल करके किसी संत की संगति और सोहबत नहीं करता, संतों के कहने के अनुसार ख्याल को अंदर शब्द और नाम से जोड़ने की कोशिश नहीं करता, उसे इंसान का जामा हासिल करने का क्या फायदा है। 142 परमात्मा ने इंसान का जामा केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा है। अगर कोई इंसान का जामा हासिल करके उस परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मालिक की खोज नहीं करता, उसका देह में आना व्यर्थ है। 143 जिस मकसद के लिए हमें मालिक ने इंसान का जामा दिया है, सांसों का भंडार खत्म होने से पहले हमें उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। राधास्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक अमृत वचन का समापन। कॉपीराइट 1993-2013 राधास्वामी सत्संग ब्यास। ऑडियो कॉपीराइट 2021 राधास्वामी सत्संग ब्यास।